ओम शांति। यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी, यज्ञ के श्रृंगार आदरणीय रमेश भाई जी का हम सब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। कल हम सब ने बाबा की मुरली सुनी, सव्यक्त वाणी की गहराई क्या है, बाबा ने किस ओर इशारा किया है, इस विषय पर क्लास कराएंगे। आदरणीय रमेश भाई जी, आपने कॉमर्स डिग्री, लॉ डिग्री के साथ 1956 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास की। 1957 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस के साथ आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के में पूर्ण रूप से समर्पित हुए। आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां 50 वर्षों से भी अधिक समय से जिम्मेवारी से कर रहे हैं। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ आप इस विश्वविद्यालय की फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, लीगल, प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं। आप वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर सेक्रेटरी हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं। आप REF के जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं। आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन। आदरणीय रमेश भाई जी, आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, आपने बहुत किताबें भी लिखी। आप द्वारा लिखी किताब पवित्र धन आपके अर्थव्यवस्था के गहरे समझ और जीवन के दर्शन शास्त्र को बताता है। इसके साथ ही आपने आर्टिकल्स, ड्रामा भी लिखे। आप विशेष रूप से यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित हैं और इससे संबंधित NGO, इंस्टीट्यूशन USA और UK, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेलेंस इन फाइनेंशियली मैनेजमेंट द्वारा भी सम्मानित किए हैं। आपने विश्व के अनेक देशों में बाबा का परिचय देकर ईश्वरीय सेवा का परचम लहराया है और गार्डलीवुड स्टूडियो का निर्माण कर पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा अनेक भारत की आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंचा रहे हैं। आपके लिए दो शब्द कहूंगी, आज्ञाकारी, ईमानदारी, वफादारी का निवास है, समझदारी, जवाबदारी, फनवार वरदारी का आवास है, ज्ञान के रत्नों से भरपूर आदरणीय रमेश भाई जी, आप कल्याणकारी, चमत्कारी, विश्व देवा सेवाधारी का लिबास है आदरणीय रमेश भाई जी।
ओम शांति। मैं बहनों को हमेशा ही कहता हूँ कि मेरा जो सच्चा परिचय वो आप देते ली है। मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये मेरा सच्चा परिचय है। बाकी तो ये सब जो है जिम्मेदारियां जो मिलती है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो इस प्रकार से जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसका कर्तव्य पालन करना एक फर्ज बन जाता है। तो इस प्रकार से ये तो जिम्मेदारियां मिली हुई थी और उसकी महिमा, उसके वर्णन आपके सामने किया गया। बाकी आज मुझे ड्यूटी मिली हुई है, कल जो अव्यक्त बाप दादा ने मुरली चलाई तो मैं आगे का कारोबार शुरू करूं, उसके पहले बाबा ने जो सवाल पूछा था मैं फिर से आप सबसे सवाल वही पूछ लेता हूं ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि साकार बाबा की साकार पालना लिए हुए इस सभा के अंदर कितने बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है कि जो साकार बाबा के, एकाध दो बैठे हुए होंगे शायद, तो इसलिए मेरे मुझे लगता है कि मैं उसी ढंग से क्लास कराऊं या तो मुरली के रिवाइज करूंगे जिसके अंदर बाबा ने जो भी चरित्र है, बाबा के जो बोल जो है, बाबा के जो वरदान जो है, और 18 जनवरी कैसे हुआ, क्या हुआ उस दिन, ये सारा इसका इतिहास भी मुरली के साथ साथ जो भी बातें हुई है सुना सकता हूँ, समझा सकता हूँ। मुरली के अंदर आदि से अंत तक बाबा के चरित्रों के बाद और हमारे साथ भी जो भी बातें हुई है उसमें आया हुआ है। आदि से भी क्या कर सकता हूँ मैं शुरुआत, अंत से भी कर सकता हूँ क्योंकि अंत के आधार पर आदि होती है। तो आप जो भी नक्की करें, जो भी बताएं, मेरे ख्याल में तो मैं आदि से ही शुरू करूं तो अच्छी बात है। मैंने घड़ी का टाइम भी नोट किया हुआ है, मेरी घड़ी जो है मैंने देखा कि 4 मिनट आगे थी। आप 4 मिनट कम करके आप समझ सकते हैं। गुलजार दादी स्टेज पर आए 7:40 को, स्टेज पर बैठे और जो वचन में ले जाने के लिए जो गीत बजता है वो 7:44 को बजा और गुलजार दादी को 6 मिनट लगी वतन में जाने के लिए। अर्थात 7:50 को दादी जी बाबा के पास वतन में गई, 8:03 को माना करीब 13 मिनट के बाद 8:03 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और 8:15 8:15 बाबा ने मुरली शुरू की। मुरली जो शुरू की वो मुरली जो मेन पोर्शन जो है, जब बाबा ने कहा अच्छा समय हो गया है अब क्या करना है, और फिर मुरली बनने जो बताया इंदौर जोन की बात बताई, वो 9:02 पर बाबा ने समझो कि इस प्रकार से मेन मुरली जो है पूरी किया उसका। अर्थात 47 मिनट्स बाबा ने कल मुरली चलाई 9:02 पर। 9:02 पर इंदौर जोन के साथ बात किया, फिर 9:06 को डबल विदेशियों के साथ बात किया, कलकत्ते का ग्रुप जो आया हुआ था जिन्होंने ये बहुत सुंदर फ्लावर्स डेकोरेशन किया उनके साथ 9:09 और 9:10 1.5-2 मिनट चला वो कारोबार। और फिर बाबा ने याद प्यार दिया, वो याद प्यार का कारोबार समाप्त तो हुआ 9:12 जब बाबा ने कहा अच्छा, और उसके बाद स्टेज का कारोबार हुआ 9:12 से 9:40। अगर इस प्रकार से गिनती करें तो 9:40 को बाबा अव्यक्त हो गए, मतलब हमारे से विदाई ले लिया, और 8:03 को आए। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा और 37 मिनट अव्यक्त बाप दादा साकार में हमारे साथ में थे। और इसलिए क्या हुआ था, बाबा को बहुत फास्ट कारोबार करना पड़ा, इतना फास्ट कारोबार करना पड़ा। मैं मुरली लिख रहा था तो मैंने उसे लिखते हैं तो मालूम पड़ता है बाबा की मुरली की स्पीड क्या है। मैंने देखा बहुत स्पीड से बाबा बोल रहे थे, क्या कि बाबा को कम समय में ज्यादा बातें करनी पड़े। बाबा ने जैसे स्टेज के ऊपर भी जो कारोबार हुआ तो बाबा को ब्रह्मा भोजन खिलाया था, इसके कारण बाबा ने हम सबको गिट्टी थोड़ी थोड़ी टुकड़ी जो है वो खिलाई। बाकी रोज तो हम बाबा को खिलाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं, इस प्रकार का कारोबार बाबा ने किया नहीं। बाबा को जल्दी जल्दी समझो जाना था या क्या, इसके कारण कल बाबा का बहुत फास्ट कारोबार चला। उसी रफ्तार से उसी स्पीड से हम भी चले तो अच्छी बात है। और बाबा ने मुरली भी स्टार्ट किया कि अभी बाबा कन्वेंशनल दृष्टिकोण से इस सीजन में मुरली नहीं चलाते हैं, नहीं तो हमेशा पिछले सीजन में और इसके पहले सालों वर्षों में बाबा यही कहते हैं चारों ओर के बच्चों को, इस प्रकार से बाबा के चारों ओर के बच्चों को याद कर करके मुरली चलाते थे। अभी से नई तरीके से ही बाबा ने किया है, सारी बाबा की जो मुरली चलाने की सुनाने की और स्पष्ट करने की जो तरीका जो है उसमें बाबा ने परिवर्तन किया है। वो बाबा का परिवर्तन भी हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे जितना समय बाबा को रहना है उसके आधार पर बाबा हम बच्चों को नोट कराते हैं। जैसे बाबा ने कल भी कहा आज के दिन सभी के मन में विशेष ब्रह्मा बाप की याद समाई हुई है, स्टार्ट टू दी पॉइंट, जिस बात के लिए सारी मुरली चलानी है वो सारी मुरली का पहले ही महावाक्य में बता दिया, ब्रह्मा बाप की याद समाई हुई है। और आज का दिन विशेष यादगार ब्रह्मा बाप के साकार से अव्यक्त रूप में पाठ बजाने का, साकार से अव्यक्त रूप में, क्योंकि 18 जनवरी आप सब जानते हैं रात के करीब 8:15-8:30 के बीच में ही वो कारोबार हुआ। ब्रह्मा बाबा पहले क्लास में भी आए, हिस्ट्री हॉल जो था वो क्लासरूम था उस टाइम पर, हिस्ट्री हॉल से विदाई ले रहे थे तब बाबा ने उसके कॉर्नर पर जाकर के ही कहा बच्चों को निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनना, वो डायरेक्ट श्रीमद भी। फिर बाबा अपने कमरे में गए, उसके पीछे पीछे तीन दादियां, दादी कुमार का दादी, प्रकाशमणि दादी, संतरी दादी और संदेशी दादी, वो उनके पीछे पीछे गए। बाबा कटिया पर बैठे थे और दादी बाजू में बैठी थी। बाबा ने दादी का हाथ पकड़ा हुआ था और बाबा ने इतना ही बोला कि लगता है कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। इतना बोल करके ही बाबा ने अपना रूप जो है साकार से अभ्यक्त कर दिया। उसका पूरा इतिहास है। नवंबर 68 में हम लोग यहाँ आए थे, बाबा ने हमको बुलाया था और बाबा ने वर्ल्ड यूनिवर्स स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनाने की छुट्टी दिया था और उसके आधार पर सारा कारोबार हुआ था। उस समय पर मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा था कि बाबा आपने कुमारका दादी को तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में नियुक्त की है, आपको मालूम होगा ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाशमणि को मातेश्वरी जब अव्यक्त हो गए 65 में, उसके बाद पहली अप्रैल 1966 के दिन साकार मूर्ति जो छपती है ना, उस जमाने में लिथो में होती थी, उसके अंदर बाबा ने अपने हाथों से लिखा कि मैं इस प्रकार से दादी प्रकाशमणि को मुख्य संचालिका और दीदी मनमोहिनी को मुख्य सह संचालिका के रूप में नियुक्त करता हूँ। तो उसके ऊपर हमने जब यहाँ हम आए 68 में नवंबर में, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आपने दादी प्रकाशमणि को तो मुख्य संचालिका के रूप में नियुक्त किया है, परंतु वो तो हमारे बॉम्बे के अंदर गामदेवी सेवा केंद्र के ही मुख्य संचालिका है, सारे यज्ञ का संचालन करने का उनके पास अनुभव कैसे है नहीं है, तो आपको कैसे वो अनुभव मिले उसके लिए कुछ सोचिए। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, मैं ट्राई सोचता हूँ करता हूँ। और फिर बाबा ने इतने में क्या हो गया, हम तो बॉम्बे चले गए, दादी भी बॉम्बे हमारे साथ आई और वहाँ ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का कारोबार हुआ। इतने में ही दीदी मनमोहिनी जो है उनका पंजाब आदि पंजाब यूपी ये सब जगह पर जाने का प्रोग्राम बन गया और यहाँ पर 31 दिसंबर आ रही थी, तो वहाँ यहाँ पर दादा राम करके उस जमाने में थे जो पहले मतलब यहाँ अपना वर्ल्ड इंडियन म्यूजियम जो बना हुआ है उसके वो मैनेजर भी रहे, फिर बाद में वो हांगकांग गए और हांगकांग में उनके बच्चों के साथ रहते थे। तो दादा राम का परिवार जो है वो 31 दिसंबर को मनाने के लिए बाबा के पास आने वाला था, तो बाबा ने पत्र लिखा कुमार का दादी को, प्रकाशमणि दादी को कि बच्ची तुम आओ, यहाँ पर ऐसा परिवार आ रहा है, तो इसलिए दादी प्रकाशमणि यहाँ आई। आकर के उनका परिवार जो है 31 दिसंबर तक का कारोबार करके गया और थोड़ा दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए दादी प्रकाशमणि बॉम्बे आई और फिर बाबा ने उसको 6 या 7 तारीख को दादी को फिर से आबू में बुला दिया और वो 7 तारीख से 18 जनवरी तक मतलब 7 से 18 11 दिन तक बाबा ने दादी प्रकाशमणि को अच्छे से ट्रेनिंग दिया। रोज बाबा झोपड़ी के अंदर बैठ करके दादी प्रकाशमणि को कहते थे ऐसा करना है ऐसा करना है, इनको भरोसा रखना है, इनको संभालना है, ऐसा कार्य करना है, उस प्रकार से पूरी ट्रेनिंग दिया बाबा ने। परंतु उस समय की ख्याल में नहीं आता था कि बाबा अव्यक्त होने वाला है और इसके कारण उसकी जिसको कहते हैं प्रिपेरेशन तैयारी करने के लिए दादी प्रकाशमणि को ये ट्रेनिंग दे रहे थे हम, और हमको भी बाबा ने ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराने के लिए कहा। ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ और फिर उसको सब रजिस्ट्रार के पास बॉम्बे में रजिस्टर्ड कराना था, तो 16 जनवरी 1969 को ट्रस्ट जो है हम बॉम्बे में रजिस्टर्ड हो चुका और ऑफिशियली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की विधि जो है समाप्त हुई और बाबा का पत्र आया था कि हमको अहमदाबाद जाना है, ऊपर में नखी लेक के पास जहां अपना बाबा का म्यूजियम बना हुआ है, वो पहले बूंदी कॉटेज था, बूंदी कॉटेज बूंदी करके राजस्थान का एक शहर है, जो टीवी की सीरियल देखते होंगे हम राणा प्रताप की उसको मालूम होगा, बूंदी का महायुद्ध करके अभी टीवी में सीरियल में वो बात आ रही है, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि आजकल जो भी है सीरियल बनाने वाले, चाहे महाभारत का बनाते हैं कोई भी, वो पुरानी जो इतिहास जो है, इस इतिहास को ऊपर नीचे कर करके अपनी बात बताने के लिए ऊपर नीचे बातें करते हैं। महाभारत के अंदर भी अभी का जो महाभारत चल रहा है उसमें 100% पुराने महाभारत की जो लोकमान्य बातें जो है उनसे विपरीत 100% विपरीत बातें बताते हैं। ऐसे ही महाराणा प्रताप के बारे में भी बताते हैं। तो इसलिए वो बूंदी का जो है राजा, उसका जो महल ऊपर मकान था उसको कहते थे बूंदी कॉटेज। एक जमाना ऐसा था उस दिनों में कि आबू के अंदर सभी राजा महाराजाओं को ही महल थे, मकान थे, उनको महल कहते थे, परंतु वास्तव में होता था मकान। जैसे पांडव भवन जो है वो पोखरण हाउस था, उसके पहले बाबा भरतपुर कोठी में, भरतपुर के राजा की कोठी में थे, फिर कोटा हाउस में थे, उसके पहले ब्रिज कोठी में थे। इस प्रकार से पांडव भवन के सामने में ही लिमड़ी की कोठी थी। इस प्रकार से राजा महाराजाओं के ही महल को, मकान को वो थे, और गर्मी के दिनों में वो यहाँ आते थे। तो ये बूंदी कोठी जो है वो एक व्यापारी ने अपनी होटल बनाने के लिए खरीद किया था और उसको बेचना था, तो बाबा को मालूम पड़ा था, तो बाबा को म्यूजियम बनाने की प्रेरणा आई थी। तो हमको बाबा ने कहा कि इसका मकान मालिक जो है अहमदाबाद में है। तो मैं 16 तारीख ट्रस्ट जैसे रजिस्टर हुआ और रात को ही निकल करके अहमदाबाद आया। 17 तारीख उनसे मिला और 90% जो तैयारियां जो है वो हमने कर लिया। रात को हमने 17 तारीख रात को हमने बाबा को फोन किया कि बाबा ऐसे ऐसे मकान मालिक के साथ बात हुई है, 90% तो सौदा फाइनल हो गया है, खाली कल थोड़ा 5-10 मिनट का काम है करके मैं पीछे कहाँ जाऊँ। मैंने अभी साकार बाबा से प्रश्न पूछा था कि मैं कहाँ जाऊँ। दो प्रश्न था, एक तो मैं आबू में आ सकता हूँ और दूसरा बड़ौदा में प्रदर्शनी हो रही थी तो उसके लिए वहाँ जाऊँ। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे प्रदर्शनी हो रही है वहाँ जाओ, यहाँ आके क्या करेगा। तो उस टाइम पर दादी प्रकाशमणि साथ में ही थे, 17 तारीख रात की बात करता हूँ। तो दादी ने कहा मेरे को, रमेश तुम आबू में आ जाओ, बाबा की बात को नहीं मानना, आबू गा करके यहाँ का काम है उसको संभालो। तो मैंने कहा ठीक है दादी, मैं कल रात को, उस जमाने में अहमदाबाद से ट्रेन चलती थी आगरा लोकल, तो आगरा लोकल में निकलूंगा 11 बजे और 19 तारीख सुबह पहुंच जाऊंगा ऊपर 9 बजे तक। तो हमारी ये बात हुई और फिर मैं 18 तारीख रात को, वो क्या कि मेरे पास ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं था और ट्रेन जो है 8 बजे से ही प्लेटफॉर्म पर आ जाती थी, तो इसके कारण मुझे 8 बजे पहुंचना पड़ा। तो मैं निकल गया था और ट्रेन के अंदर बैठ गया था, ऊपर की सीट ले लिया था। यहाँ पर 8:15 के बीच में अव्यक्त बाबा अव्यक्त हो गए और दादी प्रकाशमणि ने पहला फोन मुझे ही किया कि रमेश का क्या प्रोग्राम है, रमेश निकला है या नहीं निकला है। तो इस प्रकार जब वहाँ पर अहमदाबाद की बहनों ने बताया कि रमेश भाई तो निकल गए हैं, तो इस प्रकार से मेरा लास्ट बाबा ने फोन पर बात किया हो तो मेरे साथ ही किया था और बाबा को ये मालूम पड़ गया था कि बूंदी कोटेज जो है हम खरीद कर रहे हैं। फिर मैं 19 तारीख सुबह आया, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, तो मैं तो बस के अंदर आराम से आया और पैदल, उस जमाने में तो अपने पास वाहन नहीं था, सामान जो होता था वो कुली जो होता है तो मजदूर होता था उसके द्वारा उठा करके हम पैदल ही पीछे के रास्ते से पोस्ट ऑफिस है वहाँ से टर्न लेकर के आते हैं। तो वहाँ पर ही मुझे दो भाई मिले, वो उन्होंने हमको कहा कि रमेश भाई आपको मालूम पड़ा, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो कहा कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं। तो 19 तारीख सुबह करीब 9:15 बजे मुझे मालूम पड़ा, वो टेलीग्राम जो है 30-40 टेलीग्राम बनाए हुए थे दादी प्रकाशमणि और संदेश दादी, अंदर बाबा के कमरे में बाबा का जो पार्थिव शरीर जो था वो बाबा के खटिया पर पड़ा हुआ था। तो मुझे दादी प्रकाशमणि ने कहा, मैं गया तो मेरे को देख करके प्रश्नार्थ उनके मुख पर था, मैंने कहा कि हाँ मुझे टेलीग्राम जो आपने भेजा हुआ है सबको वो मैंने पढ़ा और ये भी मुझे अभी मालूम पड़ा कि कल रात को बाबा अव्यक्त हो गए हैं। दादी तो इन दादियाँ जो है मुझे लेकर के बाबा के कमरे में लेके गई और जाकर के हमने देखा बाबा का पार्थिव शरीर जो है इस प्रकार से साकार रूप में तो देखा, चलता फिरता बोलता शरीर देखा था। उस दिन हमने पहली बार निश्चेतन के रूप में बाबा का शरीर देखा, अव्यक्त रूप में बाबा हो गए थे अव्यक्त, साकार रूप ऐसा ही रहा था। फिर दादियों को मैंने हाथ जोड़ के कहा कि दादियां, आप तीनों ने हमारे प्यारे बाबा के पार्थिव शरीर को अच्छी रिश्ते सारी रात संभाला हुआ है, अभी आगे का कारोबार जो है आप दादियों का, आप बहनों का नहीं है। उस टाइम पर हम दादियों को दादी नहीं कहते थे, बहनें कहते थे। तो हमने कहा आप बहनों ने बहुत ही अच्छी रिश्ते कारोबार संभाला हुआ है और अभी आगे का काम हम भाइयों का है। तो संतरी दादी ने मुझे सीधा ही सवाल पूछा कि आपको इस प्रकार से अंतिम संस्कार करने की जो विधि होती है उस विधि का अनुभव है? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ मुझे अनुभव है, कारण कि 1950 में मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया, उस समय से अग्नि संस्कार करने के लिए शमशान आदि में जाने का ये सब कारोबार मैंने बहुतों का किया था। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि जी हाँ जी मुझे अनुभव है और मैं कारोबार कर सकता हूँ। तो तीनों ने मुझे पूरी ड्यूटी दे दिया और ड्यूटी देने के कारण क्या हुआ कि जैसे लौकिक पिता का अंतिम संस्कार करने का, अग्नि संस्कार करने का जो कारोबार दुनिया में करना पड़ता है, आप में से कईयों ने अपने माँ बाप का या रिश्तेदारों का किया हुआ होगा, तो इस प्रकार से हमने भी वहाँ पर उस दिन फौरन शुरू कर दिया। पहले पहले ही डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुला करके कहा कि बाबा की बॉडी को हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्यों तीन चार दिन लगेंगे, सारे हिंदुस्तान से बहन भाई आएंगे तो क्या किया जाए। डॉक्टर यहाँ पर सरकार की हॉस्पिटल है, उसका डॉक्टर वहाँ आया, डॉक्टर थल्लानी, और थल्लानी ने आकर के बताया कि रमेश भाई ये बॉडी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बॉडी में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा काम करो, एक बॉक्स बना लो लकड़े का, उसके अंदर बर्फ रखो, आइस रख करके उसके ऊपर बॉडी को संभाल करके रखो, और इस प्रकार से करेंगे तो बॉडी ज्यादा में ज्यादा 3 या 4 दिन तक रह सकता है। हमने कहा ठीक है, हमारे कारपेंटिंग डिपार्टमेंट के भाइयों को बुलाया, बाबा की बॉडी के आधार पर उसका बॉक्स बनाया, आइस मंगाया। पहले तो यहाँ पर आबू में तो आइस की फैक्ट्री नहीं थी, तो फटाफट मैंने जीप भेज करके पालनपुर से आइस मंगाया, और पालनपुर से आइस आकर के उसको आइस को नीचे में बॉक्स में नीचे रखा, उसके ऊपर बाबा के बॉडी को रखा, और फिर बाबा के बॉडी को बाबा के कमरे से उठा करके लेकर के हम लोग हिस्ट्री हॉल में गए। हिस्ट्री हॉल में 2 संदल के ऊपर बॉक्स रख करके बाबा के बॉडी को वहां रखा, और फिर सब सारा कारोबार करना शुरू किया। जैसे कि बाबा के बॉडी जब तक थी तब तक खाना नहीं पक सकता था, तो इसलिए खाना नहीं पक सकता है तो किस प्रकार से सबको खाने पीने का व्यवस्था होनी चाहिए आदि आदि बहुत सी कारोबार किया। अहमदाबाद से मालूम पड़ा कि रात की ट्रेन से अहमदाबाद से पार्टी आ रही है, साथ में अहमदाबाद से आइस लेके आती है, बॉम्बे की पार्टी भी रात को आ रही थी, रात को 1 बजे पहुंचने वाली थी। तो उस जमाने में तो हमारे पास तो कोई वाहन था ही नहीं, तो हमने एसटी का जो मैनेजर था मोहन लाल करके भाई था, मोहन लाल को हमने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हम रात को 1 बजे हमारे पास आने वाले हैं, तो उसमें बाबा की बॉडी को संभालने के लिए आइस भी आ रहा है, हम क्या करें। तो उसने कहा कि हम भी आपके इस प्रकार के आपके सामने जो ये समस्या आई है उसके अंदर हम आपके मददगार बनेंगे। और उसने कहा कि हमारी एसटी बस जो है उसी भी आपके पांडव भवन के आंगन तक जाएंगी आएंगी। कहते हैं यज्ञ हमारे एसटी का आबू का इतिहास में पहली बार बस स्टैंड से दूर होकर के पांडव भवन या किधर भी बस जा सकती है इस प्रकार से अपना रूट बदल करके, क्योंकि पहले तो क्या था पांडव भवन अपने बस स्टैंड से वहां पर जाता था, डेलवाड़ा का मंदिर है वहां तक बस जाती थी, वो अपना वो रूट था, पांडव भवन उसमें नहीं आता था। परंतु वो भाई ने कहा कि हम 1 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि सरकार की बस है मेरी तो है नहीं, 1 रुपया एक एक टिकट के पीछे एक एक पैसेंजर के ऊपर ज्यादा लेंगे, रात को 1 बजे जैसे भी ट्रेन आएंगी आपके बहन भाई उसमें चढ़ेंगे और इस प्रकार से बस उसका बंदोबस्त किया, बहुत कुछ बंदोबस्त करना पड़ा। भाइयों बहनों को टेलीग्राम किया, फोन किया, सबके फोन आते थे, क्या क्या किया। और 19 तारीख को बाबा की हिस्ट्री हॉल में हम लोग बैठे विचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। इतने में संतरी दादी खड़ी हो गई, और संतरी दादी खड़ी होकर के संदल पर जाकर के बैठी। हम सब ने कहा, अरे संतरी दादी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो संतरी दादी कुछ नहीं, मुस्कराई और संदल पर बैठी। जैसे बैठी वो बाबा के पास चली गई, बाबा के पास चली गई। हमारे पास तो कोई सामान नहीं था लिखने करने का, और सीधा ही बाबा ने प्रवेश किया। और बाबा ने कहा कि आप बच्चों के मन में बहुत संकल्प चलते हैं, बाबा आपके बाबा सभी आपके संकल्पों को नोट करते हैं, जवाब सभी संकल्पों का बाबा देंगे। अग्नि संस्कार होने दो, अग्नि संस्कार होने के बाद बाबा फिर रथ में आएंगे और मुरली चलाएंगे। फिर 19 तारीख के बाद 20 तारीख को फिर कई बातें नक्की हुई, उसमें एक बात नक्की हुई कि 1937 से 19 जनवरी 69 तक संतरी दादी ऑफिशियल मैसेंजर सिस्टर थी, और फिर उन्होंने ही उनके ही कहने पर हम लोगों ने गुलजार दादी का मुख्य संदेश की मैसेंजर सिस्टर के रूप में नियुक्त किया। गुलजार दादी को बताया कि अभी आपको ये पार्ट प्ले करना है, और इन्होंने ही 21 तारीख सुबह बाबा को जाकर के निमंत्रण दिया, जो देना पड़ता है संदेशियों को। जिस दिन बाबा को बुलाना होता है, निमंत्रण देना होता है, उस दिन सुबह जाकर के बाबा से संदेश लेकर के आती है, निमंत्रण देकर के आती है। तो इस प्रकार से अग्नि संस्कार का कारोबार हुआ। अग्नि संस्कार के साइन पर भी हमारे लिए एक समस्या थी कि अग्नि संस्कार अग्निदान कौन दे, क्योंकि बाबा के लौकिक रिश्तेदार भी थे और अलौकिक रिश्तेदार तो हम सब थे। तो अब अव्यक्त बाप दादा को फिर संदेश पूछा या संदेश के द्वारा कि अग्निदान कौन करे। तो बाबा ने जवाब दिया कि ये लौकिक दादा लेखराज ने शरीर नहीं छोड़ा हुआ है, परंतु सारे विश्व का अलौकिक पिता, आप सब जानते हैं हमारे तीन पिता होते हैं, एक हमारे लौकिक पिता होते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा जो है हमारे अलौकिक पिता थे, और परमात्मा शिव बाबा जो है वो पारलौकिक पिता है। तो बाबा ने मैसेज दिया कि अलौकिक पिता ने शरीर छोड़ा हुआ है, ये अलौकिक पिता सारे ही ब्राह्मण परिवार का पिता है, और सारे ब्राह्मण परिवार का अलौकिक पिता होने के कारण उसका मुरब्बी बच्चा जो है वो दादी प्रकाशमणि है, और इसलिए दादी प्रकाशमणि जो है वो अग्निदान दे, अग्निदान दे करके साथ में सब मिलकर के करेंगे, परंतु मुख्य कारोबार दादी प्रकाशमणि का होगा। इस प्रकार से अग्नि संस्कार हुआ बाबा का पार्थिव शरीर का, और फिर हिस्ट्री हॉल में ही बाबा ने आकर के मुरली चलाई, और इस प्रकार से पहला अव्यक्त पार्ट 21 जनवरी को शाम को 5-6 बजे शुरू हुआ, और तब से अब तक ये अव्यक्त पार्ट चल रहा है। तो इसलिए कल बाबा ने कहा कि ये 18 जनवरी जो है वो एक हिस्टोरिकल डेट है, कि उस दिन ब्रह्मा बाबा का जो है साकार रूप का पार्ट था वो अव्यक्त रूप का पार्ट हो गया। इसके पीछे भी इतिहास है, इसके पीछे भी प्लानिंग है, ये बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत गहरी प्लानिंग है। उसको समझने के लिए थोड़ा विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या है कि बाकी दुनिया के जितने भी धर्म स्थापक हैं, जितने भी धर्म स्थापक हैं, बाबा ने बताया हुआ है कि वो सभी धर्म स्थापक आकर के अपने धर्म की स्थापना भी करते हैं, और उसके बाद फिर से जन्म मरण के चक्कर में आकर के अपने धर्म की पालना करते हैं। ये बहुत गहरी बात है, बाबा के द्वारा मालूम पड़ी तभी हम जान गए, जानते आपको जानने को मिला कि धर्म स्थापक जो है वो शरीर छोड़ करके जाते हैं तो कोई सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में नहीं जाते हैं, वो यहाँ ही रहते हैं, और यहाँ ही रह करके जैसे आपको मालूम रहेगा गुरु नानक देव ने जो स्थापन किया सिख धर्म, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने आकर के उसमें परिवर्तन किया, बहुत कुछ किया। गुरु फ्रीडम जो चालू था वो बंद कराया, ऐसी ऐसी बातें जो हुई है उनसे लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जो है वही गुरु नानक का स्वरूप था, एडवांस स्वरूप, मतलब यहाँ तो पुनर्जन्म का स्वरूप था। और इस प्रकार से कई जगह पर ये मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से बाकी धर्म स्थापकों का कार्य धर्म स्थापना के साथ साथ धर्म की पालना का होता है। परंतु आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ और हमारे अव्यक्त बाप दादा के साथ क्या कारोबार, आप जानते हैं कि अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त बाप मतलब श्री बाबा जो है सतयुग में नहीं आ सकते। आप सबको मालूम है श्री बाबा सतयुग में नहीं आ सकते। तो सतयुग का कारोबार कैसे किया जाए, कैसा किया जाए, कौन करेगा, तो इसके लिए उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग नहीं होगी तो कारोबार करने का जो भी उसने कारोबार करने में जो भी विधियां अपनानी पड़ती है वो कैसे मालूम पड़े। तो इसीलिए अव्यक्त बाबा ने युक्ति की कि ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त कर दिया और अपने साथ में कर दिया। अब समझे मेरी बात को, अव्यक्त बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त कर करके अपना साथी बना दिया। और साथ साथ वो ऐतिहासिक घड़ी थी, ऐतिहासिक क्षण थी कि सारे उस समय के जितने भी मानव सृष्टि पर थे इसके अंदर पहला संपूर्ण बनने का, पहला संपूर्ण बनने का यश कहो ब्रह्मा बाबा को मिला। कि सारे ही 5000 वर्ष के चक्कर में शुरू से आकर के जो भी जन्म मरण के चक्कर में आते आते जो भी उनका जीवन में बना, उसके बाद में 37 से 30 जो बाबा ने पुरुषार्थ कर करके अपने आप को संपूर्ण बनाया। और संपूर्ण बना करके बाबा ने दो चार अव्यक्त साकार मुरली में कहा भी था कि जब कोई संपूर्ण बन जाता है फिर ये शरीर नहीं चला सकता है, ये बाबा ने कहा था। तो वो बाबा को पर उस टाइम पर हमने लाइटली लिया था, ये तो बाबा कहते हैं, परंतु ये बाबा ने प्रैक्टिकल में अनुभव कराया कि जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने और उसी घड़ी उसके बाद शरीर का हिसाब किताब पूरा हो गया और उसके कारण बाबा अव्यक्त हो गए। हमारे बाकी जो भी शरीर छोड़ते हैं अव्यक्त नहीं होते, चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी हमारे एडवांस पार्टी में गए हुए हैं वो सब भी अव्यक्त नहीं होते हुए भी एडवांस पार्टी में गए हैं। आप दो बातें अलग अलग समझिए, एक है अव्यक्त बनना और दूसरा है एडवांस पार्टी में जाना। एडवांस पार्टी का कई जगह पर चित्र लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ यहाँ नहीं है, ऊपर में हिस्ट्री हॉल के अंदर एडवांस पार्टी का हमने अपने ऊपर जो हिस्ट्री हॉल नहीं, अपना जो ओम शांति भवन का मेन हॉल जो है यूनिवर्सल पीस हॉल, उसके अंदर वो चित्र लगा हुआ है। करीब 30-31 बहन भाई जो भी है हमारे एडवांस पार्टी में गए हुए, एडवांस पार्टी में गए हुए फिर से जन्म लेकर के कारोबार यहाँ कर सकते हैं। हमारी मातेश्वरी भी जी वो भी एडवांस पार्टी में गई हुई है, वो बाकी सब एडवांस पार्टी में गए हुए हैं। और ये पहला इंस्टेंस है जिसके अंदर अव्यक्त बाप दादा ने ब्रह्मा बाप को भी अव्यक्त बना करके सूक्ष्म वतन में ठहरा दिया और हर बात में उनको साथ में लेकर के उनको पूरी ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। राइट फ्रॉम 1969 से अब तक बाबा ब्रह्मा बाबा को साथ में रख करके सारे विश्व का इतिहास को हो, सारे विश्व की ज्योग्राफी को हो, सारे विश्व की फिलोसॉफी को आदि आदि जो भी है जिसका जिसकी जरूरत सतयुगी आज के दुनिया से और दुनिया में जरूरत पड़ेगी वो सब बातों की ट्रेनिंग ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त बाप दादा करा रहे, बाबा करा रहे हैं। परिणाम रूप क्या होगा कि सतयुग की शुरुआत के अंदर जो भी कारोबार करना होगा उसकी ट्रेनिंग ब्रह्मा बाबा को पहले से ही मिली हुई होगी और उसके ही कारण कारोबार उनके हाथ में बाबा देंगे। सतयुग की शुरुआत का कारोबार आप में से जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि मनुस्मृति करके भारतीय संस्कृति का हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है मनुस्मृति का। उसका पहला अध्याय जो है उसके अंदर सृष्टि की रचना कैसे हुई ये बात बताई हुई है। तो उसके अंदर 10वां श्लोक है, 10वें श्लोक में कि सृष्टि सुवर्ण गर्भ अर्थात परमात्मा ने नई सृष्टि रची, रचने के बाद इस नई जो सृष्टि जो है उसका संभालने का कारोबार किसको दिया जाए, नई सृष्टि जो रची उसका संभालने का कारोबार किसको दिया जाए। तो इसलिए उस श्लोक में बहुत सुंदर रीते समझाया हुआ है कि पिछली कल्प में, पिछले कल्प माने जो अभी ये कल्प समझो चल रहा है, तो पिछले कल्प में जिस तन में परमात्मा का अयन हुआ है, नारायण नर प्लस अयन, अयन माना आना, रामायण आप सबने सुना होगा, रामायण राम का आने का, जिसके अंदर राम का आने का इतिहास पूरा ही लिखा हुआ है वो है रामायण। इस प्रकार से इसके बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है कि जिस तन में परमात्मा, जिस नर के तन में परमात्मा का पिछले कल्प में आने का अयन स्थान था, अवतार धारण करने का, साकार रूप धारण करने का जो तन था, और जिसको इस प्रकार से पूरी तैयारी करा करके कारोबार सिखाया था, उनको ही उनके ही हाथ में नई सृष्टि की रचना कर करके नई सृष्टि का कारोबार दिया, और इसलिए उसका नाम हुआ नारायण। अब बाबा कहते हैं लक्ष्मी और नारायण, तो ये नारायण माना नर प्लस आयन, जिसके तन में परमात्मा पिछले कल्प में अवतार धारण कर करके अपना कारोबार किया, उसी व्यक्ति का, उसी आत्मा का, उसके उसके ऊपर नई सृष्टि का कारोबार करने का वो जिम्मेदारी बाबा ने दी, परमात्मा ने दी, और उन्होंने आकर के वो नई सृष्टि का कारोबार संभाला, और इसलिए उनका पहला नाम बना नारायण। तो इस प्रकार से पूरा ही इतिहास है, वो जो इतिहास जो है 18 जनवरी के साथ लगा हुआ है कि कैसे कैसे हम बाबा अव्यक्त हो गए, किस कार्य के लिए अव्यक्त हो गए, किस बात के लिए अव्यक्त हो गए, ये सारी बातें जो है वास्तव में बाद में समझ में आती गई। बाबा ने 21 जनवरी की भी अव्यक्त मुरली में बताया कि अभी तक तो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा थे और उसके द्वारा इस सृष्टि रंगमंच के ऊपर उनका कारोबार होता था, अब ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा जो है वो पीछे स्टेज के पीछे चले गए हैं, और अभी आप जो सितारे जो है, ज्ञान सितारे जो है, ज्ञान सितारों की रिमझिम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे चलेंगे, उसके लिए बाबा ने दोनों को अव्यक्त कर करके हम साक्षी होकर के देख रहे हैं कि ज्ञान सितारे कैसे कारोबार आगे का, सेवा का, ईश्वरीय सेवा को बढ़ाने करने का, और विनाश तक का कारोबार कैसे ज्ञान सितारे करेंगे। तो इस प्रकार से अभी हम बच्चों का जो भी है, आप हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, इन सब का ज्ञान सितारों के रूप में इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर कारोबार चल रहा है। तो बाबा साक्षी होकर के देख रहा है कि कैसे हम ज्ञान सितारों के रूप में अपने को, हम सबको जो ड्यूटी मिली हुई है, जो हमारा पार्ट है, वो पार्ट को, हमारा जो पात्र जो है उसको हम किस प्रकार से संभालते हैं। तो इसलिए कल जो बाबा ने जो पहला महावाक्य में कहा कि 18 जनवरी जो है वो बाबा ने कहा साकार से अव्यक्त रूप में पार्ट बजाने का, ये जो ट्रांसफर जो हुआ साकार से अव्यक्त रूप में पार्ट बजाने का जो ट्रांसफर हुआ, उस ट्रांसफर का रिकग्निश करने का 18 जनवरी दिन है, और इसलिए ही हम सब बच्चे तब से 18 जनवरी मनाते हैं। ये इसलिए भी मनाने की जरूरत है क्योंकि मैं हमेशा ही मानता हूं कि हर एक के जीवन में 18 जनवरी आएंगी, कोई न कोई दिन आएगा, हम सब कोई भी यहाँ ऐसा तो नहीं बैठा हुआ है कि जो इमोर्टल हो, इमोर्टल नहीं है, हम सब भी मॉर्टल है, मतलब हम सब का शरीर एक कभी न कभी कैसे न कैसे छूटने वाला ही है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे हम लोग भी इस शरीर से अव्यक्त तो होने के लिए हमको भी कभी न कभी ये पार्ट बजाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात हम ध्यान में रखें कि ब्रह्मा बाबा के बारे में जैसे कल बाबा ने कहा कि बाबा पास हो गया, संपूर्ण बन गया, पास हो गया, संपूर्ण बन गया। और इसके कारण क्या हो गया, उनका जो भी शरीर छोड़ने का कारोबार था वो अव्यक्त रूप में मनाया जाता है। हम लोग क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करें, हम लोग भी क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम भी इस प्रकार से हमारा जो भी इस जन्म का या तो पिछले 84 जन्मों का जो भी हिसाब किताब है, वो जो भी हिसाब किताब है उसको संपूर्ण रूप से वो पाठ पूरा कर करके अपने आप को संपूर्ण बना करके क्यों नहीं ब्रह्मा बाप के साथ ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड बन करके सूक्ष्म वतन में जा करके बैठे और आगे का जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य है उसके अंदर उनके मददगार बने। ये बहुत ऊंची मंजिल है, बहुत ऊंचा ध्येय है, परंतु हम भी इस प्रकार से कार्य करें कि हमारे जीवन में भी कभी भी 18 जनवरी के रूपी आएंगे डेट। आपको मालूम होगा एक बार मोहिनी बहन जो है हमारी, जो दादी के साथ में थी, अभी भी कल भी बैठी थी, उनको भोग लेकर के बाबा के पास गई थी। तो बाबा ने सब उनको पूछा कि हमारे सभी बच्चे एवर रेडी है, हमारे सभी बच्चे एवर रेडी है। तो मोहिनी बहन ने कहा, बाबा ये तो प्रश्न आप दादी प्रकाशमणि दे सकती है, मैं नहीं दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि को ऊपर इमर्ज किया और बाबा ने पूछा सबको, आप सबको मतलब हम सबकी परीक्षा बाबा ने ऊपर ली थी कि मेरे बच्चे सब एवर रेडी है। किस बात के लिए एवर रेडी, जिनके जीवन में भी 18 जनवरी आ जाए तो इस प्रकार से शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। तो दादी प्रकाशमणि को पूछा गया, बाबा ने उनको इमर्ज किया। तो दादी प्रकाशमणि ने हम सब की ओर से बहुत अच्छी वकालत किया और हम सब की ओर से दादी प्रकाशमणि ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बाबा आपके सभी बच्चे, आप सुन लिए दादी प्रकाशमणि का उत्तर। दादी प्रकाशमणि ने हम सबकी कैसे सुंदर वकालत किया, बाबा ने दादी ने कहा कि बाबा आपके सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है। आप समझे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसमें क्या हो गया, कोई आगे है या पीछे है उसके बारे में दादी को बताना नहीं पड़ा, पर सीधा ही उन्होंने बता दिया नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार सब एवर रेडी है। ठीक बात कहा दादी प्रकाशमणि ने, हम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है कि हमारे जीवन में 18 जनवरी आए तो हम भी उसी हिसाब से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम एवर रेडी है। तो इसलिए 18 जनवरी हमारे जीवन में कभी भी आ सकती है, उसी दृष्टिकोण से कल जब हमने 18 जनवरी मनाई उस प्रकार से सतत ध्यान में रहे कि हमारे जीवन में भी 18 जनवरी आने वाली है। और जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने परिस्थितियों में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो दुनिया में रहे हुए थे, तो उस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को भी कहा। इसलिए बाबा ने कल भी कहा कि आज का दिन यादगार में ब्रह्मा बाप को अव्यक्त रूप में पाठ बजाने का निमित्त बने। फिर बाबा ने कहा कि साकार रूप में बाप के साथ मिलन बनाने वाले थोड़े बच्चे थे, बाबा ने कल हाथ भी खड़ा करवाया। फिर बाबा ने कहा कि थोड़े ही तो इस इंदौर जोन के कनेक्शन से अभी आए हुए हैं, इतने यहाँ हैं, बाकी भी काफी अभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 18 जनवरी 1969 तक साकार बाबा की साकार पालना ली हुई थी। बाकी तो ज्यादा करके अभी हमने आपसे सवाल पूछा एक दो के सिवाय, बाकी सब 18 जनवरी 1969 के बाद ही हम बाबा की अव्यक्त पालना के रूप में ही यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा ने फिर कहा जो भी जिन्होंने सांस लिया हुआ था उनके मस्तक में क्या होता है, जिन्होंने सांस लिया था माना साकार में पालना लिया हुआ था उनके बारे में कहा है कि उनके मस्तक में ब्रह्मा बाप का चरित्र बोल और वरदान स्मृति में है। चरित्र बोल और वरदान स्मृति में है। चरित्र क्या है, बोल क्या है, उसके बारे में तो हमारी आदि देव की किताब हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने लिखी हुई है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सी चरित्र की बातें हम लोगों ने ज्ञानामृत आदि में भी हम सबके अपने अनुभव के आधार पर होता है। बाबा के चरित्र की एक ही बात आपको बता सकता हूँ कि जब बाबा व्यापार करते थे, हीरे जवाहरों का व्यापार करते थे, और उस व्यापार के लिए उनका नेपाल के राजाओं के पास जाना हुआ, राजा राणा आदि जो भी थे, तो इन्होंने वहाँ पर ब्रह्मा बाबा को खाना बताया, खाने खाने के लिए पार्टी में बुलाया। और राजाओं की पार्टी में तो आप जानते हैं नॉन वेज आदि उस जमाने में बनता था, अभी भी बन रहा है, क्षत्रिय लोग बहुत करके कई जगह पर नॉन वेज खाने वाले होते हैं, तो उन्होंने नॉन वेज खाना बनाया हुआ था, ब्रह्मा बाबा को ऑफर किया। बाबा ने बहुत सुंदर अपने चारित्र को ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर राजाओं को भी जवाब दिया। नहीं तो दुनिया में और लोग क्या होता है, राजा के सामने बोल नहीं सकते हैं, चलो खा लो, इस प्रकार से कर लेते हैं। बाबा ने कहा मैं आपके पास हीरे जवाहर बेचने के लिए आया हूँ, मैं अपना ईमान जो है, मैं यहाँ हमारा ईमान जो है, हम मेरा जो सिद्धांत जो है, मेरे जो प्रिंसिपल्स जो है, जिस प्रिंसिपल्स के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है, वो मेरा ईमान बेचने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। आप समझ गए दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, क्या आज के पॉलिटिशियंस के ईमान देखो, इनका क्या ईमान है, क्या हो गया उनके ईमान के लिए। जगदीश भाई ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा हुआ है कि आज के जो भी पॉलिटिशियन है ना, वो गंगा जाते हैं तो गंगाराम बनते हैं, और जमुना नदी पर जाते हैं जमुनाराम बन जाते हैं, जैसा समय उस प्रकार से बन जाते हैं, आया राम गया राम। इस प्रकार की आज की दुनिया के अंदर आज के जो नेता हैं, जो भी है वरिष्ठ, जो भी नागरिक इस प्रकार के हैं, उनका जीवन ऐसा बनता है। और उसकी भेंट में हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितना सुंदर श्रेष्ठ आदर्श हमारे सामने रखा कि चरित्र हमारा जो भी है, हमारा ईमान जो भी है, उसका हम किसी भी न किसी हर तरीके से उसका पालन करेंगे, उसकी सुरक्षा करना, चरित्र का सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। दूसरा शब्द बाबा ने किया ब्रह्मा बाबा का बोलना भी जो है, उसके ऊपर ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ही ध्यान रखा। और अव्यक्त मुरली में भी बताया गया है हम बच्चों को कि हम बच्चों को अपने बोल के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सुंदर अव्यक्त मुरली है बोल के ऊपर, शब्दों के ऊपर। बाबा ने कहा है कि आप बच्चों को अभी बोलना पड़ता भी है, आपके पास ज्ञान की शक्ति भी आई हुई है, और ज्ञान की शक्ति के कारण आप ऐसे बोल बोल सकते हैं जिसके कारण वो बोल जो है औरों के लिए वरदान भी बन सकता है। और अगर आपने गलत तरीके से बोल का उच्चारण किया, बोल बोले, तो उनके लिए आप श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने बोल के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे बोल बोलिए जिसके आधार पर औरों के लिए आपके बोल जो है वरदान ही बन जाए, श्राप नहीं बने, वरदान ही बने। क्योंकि अगर श्राप बन गया तो फिर उसका हिसाब किताब बनेगा, और संगम युग में किए हुए है पाप आदि जो भी है, इनको चुकतू करने में तो बहुत मेहनत होगी। तो इसलिए बाबा ने जो कल कहा चारित्र बोल भी ऐसे बोलने चाहिए, बाबा ने कहा वरदान के रूप में, और वो वरदान के रूप में सामने वालों की स्मृति में रहे कि देखो इनके साथ हमने बात किया, हमको ऐसा सुंदर वरदान मिला। एक बात ध्यान में रखने की है कि परमात्मा के द्वारा भी यहाँ हमें वरदान मिलता है ना। और शास्त्रों में बड़े बड़ों जो भी है, शंकर है, ब्रह्मा है, इन सब के द्वारा भी जो वरदान मिलता है, जिनों को वरदान मिला हुआ है उन्होंने उसका उपयोग गलत तरीके से किया। रावण को भी वरदान मिला था, मालूम है ना आप सबको, रावण को भी ये वरदान मिला था, कुंभकर्णों को भी वरदान मिला था। कुंभकर्णों को उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि बच्चे तुम मांग, क्या चाहिए तुमको, तो कुंभकर्ण के द्वारा आप जानते हैं क्या बोला गया, मुझे उसको इच्छा थी इंद्रासन बोलने की, परंतु बोल दिया गया निंद्रासन, आप सबको मालूम होगा। तो इस प्रकार निंद्रासन बोल दिया तो क्या हो गया, अब तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया, तो इस प्रकार से उसको छह मास नींद करने का, एक दिन जागृत रहने का, इस प्रकार से वरदान हो गया। ऐसे बहुत है, बहुत सी जो भी वरदानों की जो इतिहास अगर कोई लिखे परमा शास्त्रों के अंदर दिए हुए हैं वरदानों का इतिहास क्या है, तो 99% जो भी जिनको भी वरदान मिला हुआ है इन्होंने उस वरदान का गलत उपयोग किया हुआ है। जब सभी सबका देखो, चाहे व्यक्तियों से वरदान मिले हैं या बड़ों से, परमात्मा के यहाँ तो ब्रह्मा शंकर भगवान आदि जो भी है जिनको दुनिया में हम लोग भगवान पहले मानते थे, इन सब के आधार पर जो भी वरदान मिले हुए उनका 99% जो है नेगेटिव उपयोग, गलत उपयोग ही हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने यहाँ कृकाश कहा, बोल जो है वरदान के रूप में सामने वालों की स्मृति में है। हम भी ऐसा प्रयत्न करें हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा ऐसे बोल बोले कि जिसके आधार पर सामने वालों को लगे कि हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी पालना के लिए ये बोल बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बोलने के शब्दों के ऊपर जो है, इसलिए जिसको मैं हमेशा ही कहता हूँ उसको कहते हैं शब्द संयम। शब्द संयम रखना चाहिए, शब्द संयम के आधार पर हमारे मन में जो भी संकल्प उठते हैं, संकल्प में तक आवे तो और बात है, परंतु उसको कृपया बोल के अंदर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विकर्म बन जाएगा। तो इसलिए शब्द संयम सदा सदा सब ध्यान में रखें। और फिर बाबा ने आगे कहा हुआ है कि ब्रह्मा बाप को याद करते हैं क्योंकि साकार रूप में पाठ बजाने की प्रेरणा लेने के लिए। हम ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र जो है, जैसे आदि देव किताब आदि आदि में हम सबने जो लिखा हुआ है, इसका कारण यही है कि इन चरित्रों के द्वारा हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। और बाबा ने फिर बहुत अच्छी बात कह दी है कि प्रेरणा लेने वाले और प्रेरणा लेकर के क्या करने का, तो ब्रह्मा बाप के साथी बनने वाले जो पुराने बहन भाई हैं उनकी और जिम्मेदारी है। और बाबा ने कहा लेकिन अभी तो आप सब साथी बन गए हो, जो भी अव्यक्त पालना के रूप में 18 जनवरी 1969 के बाद बाबा के बच्चे बने हैं वो अव्यक्त रूप की पालना लेने वाले हैं, अर्थात हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सब साथी बन सकते हैं, वो बन गए हैं। और इसलिए बाबा ने आगे का भी कहा, भले साकार रूप में पालना नहीं लिया है परंतु अव्यक्त रूप में आप सभी पालना ले रहे हो। आप सबको अनुभव होता ही होगा कि कैसे बाबा का साकार रूप से अव्यक्त रूप से पालना मिलती है। तो बाबा ने हाथ भी उठा उठवाया इस प्रकार से, बाबा ने कहा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अभी भी कितनी पालना दे रहे हैं। इस प्रकार से बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी अव्यक्त रूप का पाठ जो है, पालना करने और कराने वाला, वो बहुत ही सुंदर पाठ है। कल की मुरली के द्वारा तीन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। एक बाप दादा का संयुक्त पाठ, एक है बाप दादा का संयुक्त पाठ, दूसरा है शिव बाबा का अकेले का पाठ, और तीसरा है साकार ब्रह्मा का अव्यक्त रूप का पालना का पाठ। जैसे बाबा ने कहा अव्यक्त ब्रह्मा अब भी कितनी पालना दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट है शिव बाबा का कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अभी भी पालना दे रहे हैं। ये तीनों का पार्ट जो है, तीन प्रकार का पार्ट जो है, एक ब्रह्मा अव्यक्त बाप दादा का पार्ट, एक अव्यक्त बाबा का पार्ट, और दूसरा साकार बाबा का, साकार ब्रह्मा का अव्यक्त रूप का पालना का पार्ट। ये तीनों पार्ट जो है हमारे ज्ञान की गहराई में अगर आप जाओ, जिनको जिनको विचार सागर मंथन करने की हैबिट हो और जो विचार सागर मंथन करते हो, ऐसे बहन भाइयों का हमारा नम्र विनंती है कि ये तीनों पार्ट को, तीनों पार्ट अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे होता है ना खाने में गेहूं अलग होता है, चावल अलग होता है, सब्जी अलग होती है, ये तीनों का पार्ट खाने में अलग अलग होता है। इस प्रकार से तीनों का पार्ट, बाप दादा का कंबाइंड पार्ट, बाप का अव्यक्त बाबा का ब्रह्मा अव्यक्त शिव बाबा का अलग पार्ट, और अलग ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त रूप की पालना का पार्ट, तीनों ही पार्ट अलग अलग है, तीनों ही पार्ट महान है, तीनों ही पार्ट हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन सकता है। तो इस प्रकार से तीनों पार्ट की गहराई और उसकी गहराई में जाकर के उसकी समझ अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए बाबा ने कल एक डेफिनेशन बताई, ब्रह्मा बाप के साथ जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति कहो, निर्माण ब्राह्मण शब्द कहाँ से आया कि ब्रह्मा की संतान माना ब्राह्मण। जैसे मनुष्य, आप सब जानते हैं, हम सबको कहा जाता है हम मनुष्य है। मनुष्य का अर्थ होता है मनु की संतान, मनु की संतान। गीता में भी पहले चौथा अध्याय में पहला श्लोक है इमाम विवस्वते मनुष्य, मतलब ये ज्ञान मैंने पहले मनु को दिया, मनु ने ईश्वर को दिया। इस प्रकार से समाज के अंदर समय प्रति समय वो चलता रहा, फिर वो ज्ञान प्रायलोप हो गया और हे अर्जुन मैं आज आपको सुना रहा हूँ। हमने उसके ऊपर एक ऐसे कॉम्पिटिशन भी रखी थी, शांति। मैं आपको कह रहा था गीता के बारे में, क्या है आजकल बाबा भी कहते हैं गीता का भगवान कौन और सिद्ध करो। तो हमारे कई भाई बहन जो है सीधा ही सबको बोल देते ये झूठी गीता है, झूठी गीता है, सच्ची गीता दूसरी है, सच्ची गीता दूसरी है। तो सामने वालों को हमारे शब्द जो है पत्थर जैसे लगते हैं। इसके बदले में बात वही होती है, परंतु तो अलग तरीके से रख सकते हैं कि गीता के चौथा अध्याय में श्री कृष्ण भगवान वाच जो है उसके अंदर क्या है, पहले मनु को मैंने ये ज्ञान सुनाया, ये गीता ज्ञान मनु ने ईश्वर को सुनाया और इस प्रकार से सबको वे ज्ञान मिलता रहा, सबने सुना और उसके बाद आस्ते आस्ते वो ज्ञान जो है प्राय लोप हो गया, और फिर हे अर्जुन मैंने आज तुमको फिर से वही ज्ञान सुनाया। तो इसलिए हमने ऐसे कॉम्पिटिशन भी रखी थी, तिरुपति का जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जो है उनके सहयोग में ऐसे कॉम्पिटिशन रखी थी। ये आदि गीता कौन सी है जिसके बारे में गीता का चौथा अध्याय में लिखा हुआ है कि मैंने पहले ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने ईश्वर को दिया, ये ज्ञान प्राय लोप हो गया और मैं आज फिर से सुनाता हूँ। तो ये जो आदि गीता पहले वाली थी, इसलिए दो बात का डिस्टिंक्शन कर करके कहे कि आदि गीता माना जो गीता के चौथा अध्याय में पहले तीन श्लोक में आ गई है बात, वो है आदि गीता। वो कौन सी थी, हमने इसके ऊपर ऐसे कॉम्पिटिशन रखाई थी, और प्रोफेसर वीरकर करके जो है हमारे सरोज बहन जो है अस्मिता बहन जो कि बहुत सुंदर गीत गाती है, उसकी माँ जो है उसका पिताजी जो है प्रोफेसर वीरकर, वो फर्ग्यूसन कॉलेज का या ऐसा किसी का प्रिंसिपल भी थे, बहुत संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने पेपर लिखा था, उसमें अंदर स्त्री पर्व के अंदर 8-6-7 श्लोक ऐसे हैं जिसके अंदर आदि गीता क्या थी वो बताया हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये गीता झूठी गीता ऐसा नहीं कहे, परंतु कहे आदि गीता क्या थी जिसको श्री कृष्ण ने खुद ने रिकग्नाइज किया हुआ है कि पहले मैंने ये ज्ञान जो है मनु को दिया, मनु ने ईश्वर को दिया, और फिर वो प्रायलोप हो गया, आज मैं हे अर्जुन तुमको फिर से सुनाया हूँ। आज जैसे होता है ना, मैं ऐसी की दुनिया की बात बताऊं, अभी 16 पिक्चर आए हुए, शोले आपने सुना होगा, शोले पिक्चर जो 3 डायमेंशन में आया हुआ है, वो क्या है, वो ओरिजिनल पिक्चर जो बना हुआ था बहुत प्रसिद्ध हो गया था, उसकी रीमेक है। आप समझे मेरी बात को, रीमेक है आज का शोले। इस प्रकार से आज की जो गीता जो है उसको हम कहे ये झूठी गीता नहीं है, परंतु रीमेक है, ओरिजिनल गीता कुछ और थी जो पहले मनु को सुनाई, मनु ने फिर ईश्वर को सुनाई, और इसके आधार पर उसका जो फल स्वरूप जो निकला वो क्या है, वो सबको बताने से क्या हो जाएगा, दोनों को कॉन्ट्रास्ट मालूम पड़ जाएगा, और इसके आधार पर समझ जाएंगे कि आज की गीता से भी पहले कोई एक गीता थी। जिन्होंने महाभारत पढ़ा हुआ होगा उनको मालूम रहे कि महाभारत में एक गीता नहीं है, 14 गीताएं हैं, 14 प्रकार की गीताएं हैं, और एक के बाद एक बहुत अलग अलग प्रकार की अलग अलग समय के कारण, जैसे व्याघ्र गीता है, फिर स्त्री पर्व के अंदर गीता है, भीष्म गीता है, भीष्म जब शरीर छोड़ने के ऊपर था तब कृष्ण और अर्जुन जाकर के उनको कहते हैं कि आप अपना अनुभव गीता के रूप में बताओ, तो भीष्म गीता है। इस प्रकार से 14 प्रकार की गीता है और इसके अंदर भगवद गीता एक है। तो इस प्रकार से मैं इसलिए आपके सामने ये बात रखी कि आप सभी भी इस प्रकार से गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए जाओ तो सामने वालों को सीधा ऐसा मत कहिए कि ये झूठी गीता है, परंतु कहे आदि गीता क्या है। ये जो हमारे सामने अभी जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है, परंतु आदि गीता क्या है, जैसे आदि देव क्या है वो दुनिया वालों को हमने सिद्ध किया, इस प्रकार से आदि गीता जो परमात्मा ने हम सबको अभी सिखा रहे हैं वो ही फिर द्वापर युग के बाद जिसके बारे में गीता का जो महिमा जो गाया लिखा हुआ है उसके अंदर भी है, व्यास ने ग्रसिताम पुराण मुनि नाम मध्य महाभारतम, व्यास करके एक मुनि महात्मा जी हो गए हैं, उन्होंने ही महाभारत के अंदर बीच में ये गीता का निर्माण किया, इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है। तो ये व्यास जी जो भी है जिन्होंने द्वापर युग के बाद लिखा गीता का, एक इतिहास ऐसा भी कहते हैं कि वर्तमान गीता जो है वो 8वीं सदी में लिखी गई थी और महाभारत के अंदर प्रक्षिप्त हो गई थी। ये सारी बातें पुरानी दूसरी बातें हैं, हम आगे की बातें करते हैं। तो बाबा ने बताया आप अपने लिए इसलिए कहते हो ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा बाप की संतान है, हम ब्राह्मण हैं, और इसलिए बाबा ने कहा है ये आप ब्राह्मण जो है चोटी है, चोटी ब्राह्मण के बाद देवता, देवता के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र, और फिर से हम ब्राह्मण बन रहे हैं। तो ये बाबा ने कल ये बात कही, और दूसरी बात कही, थोड़ी आप नए भाई बहनों को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बाबा ने कहा है साकार ब्रह्मा के साथ पाठ बजाना यह भी भाग्य की निशानी है, साकार ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना यह भी भाग्य की निशानी है। परंतु फिर जो नए बहन भाई है उनको बुरा न लगे इसलिए बाबा ने कहा है। लेकिन अब भी सभी बच्चों को बाप दादा, बच्चों की बाप दादा दोनों ही मिलके सेवा कर रहे हैं, अभी भी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप भी भाग्यवान है। परंतु जिन्होंने साकार बाप के पालना का अनुभव किया उसको बाबा ने कहा भाग्य की निशानी है। बाबा ने इसलिए फिर आप हम सबको कहा आप भी सब कितने भाग्यवान हैं, ऐसा कहा। फिर कईयों के मन में प्रश्न उठता है हम किसको याद करें, ब्रह्मा बाबा को याद करें या शिव बाबा को याद करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रश्न तब होगा जब हमको दोनों को अलग अलग समझते हैं। अगर यही समझे अभी जब बाप दादा को याद करने का तो दोनों उसमें आ जाता है। जैसे माँ बाप दोनों ही होते हैं, इस प्रकार से बाप ब्रह्मा बाबा और दोनों एक साथ में मिलकर के ही काम करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कल ये जो प्रश्न जो उसका जवाब दिया बहुत सुंदर, बाबा ने जवाब दिया अकेला बाप माना शिव बाबा भी नहीं, अकेला ब्रह्मा बाप भी नहीं, परंतु दोनों को याद करो, दोनों को याद करो। मनमना भाव के आधार पर अव्यक्त बाप हो जाएगा और मध्याजी भाव अर्थात जो वर्षा मिलता है जिसके साथ हमें काम करना पड़ेगा, पाठ बजाना पड़ेगा सतयुग से, वो ब्रह्मा बाबा है। तो इसलिए दोनों को याद करो। और बाबा ने कहा दोनों की पालना से आगे सब बढ़ रहे हो, हम सब दोनों की पालना से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर बाबा ने दूसरी बात भी कही, कितना प्यार से बाप बताते हैं कि बाप दादा दिल से दिल में रोज अमृत वेले उन सिकेले दो बच्चों को जो फॉलो करने वाले, पहले साथ की दिभाया ये सब बात अलग है, परंतु अभी बाबा किसको याद करते हैं ज्यादा, जो बाप को फॉलो करने वाले उसको विशेष याद प्यार देते हैं। इसलिए हमको बाप के याद प्यार का अधिकारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बाप के पालना का अधिकार बनना विशेष याद प्यार लेना हो तो फॉलो फादर करना पड़ेगा। फॉलो फादर में क्या है, साकार को इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से कर्तव्य किए, जिस प्रकार से शरीर में रहते हुए दुनिया के कारोबार के अंदर रहते हुए भी अपना पार्ट कैसे श्रेष्ठ किया और 36 वर्ष की पुरुषार्थ के जीवन पुरुषार्थ के कारण संपूर्ण बन करके ये सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर पहला ऐसा पार्टधारी था कि जो संपूर्ण बन करके जन्म मरण के चक्कर से निकल करके सूक्ष्म वतन में जाकर के अव्यक्त बाप दादा का साथी बना। इसलिए बाबा ने फिर से कहा कि ब्रह्मा बाप ने आज विशेष बाप दादा दोनों को फॉलो करने वाले बच्चों को सामने ला करके विशेष याद प्यार दिया। फिर आगे बताया, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत बहुत बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने सबको बहुत बहुत दिल से प्यार दिया। आज की दुनिया में प्यार शब्द जो है ना थोड़ा बदनाम हो चुका है, प्यार लव और इस प्रकार से स्थूल रूप में ही सब ले लेते हैं। इसलिए बाबा ने ये प्यार शब्द को कोई स्थूल रूप में नहीं ले ले, ले नहीं लेवे, इसके लिए बाबा ने प्यार की भी डेफिनेशन बताई है। प्यार माना, प्यार माना वो शरीर का प्यार ये वो नहीं, परंतु बाबा का कहना का शुद्ध प्यार अर्थात जिसके कारण, जिस प्यार के कारण फॉलो फादर का वरदान मिलना है वो है प्यार। जैसे ऊपर बताया ना ब्रह्मा के संतान माना ब्राह्मण, इस प्रकार से प्यार माना ही ये फॉलो फादर का जिससे वरदान मिलता है, फॉलो फादर करने से वरदान मिल जाएंगे इसको प्यार कहेंगे। ये रूहानी प्यार है, ये रूहानी प्यार को दुनिया में किसी को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए रूहानी प्यार का बाबा ने कल महिमा बनाई। फिर से जो बेचारे जो जिन्होंने आप सब जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं लेकिन चरित्र सुन करके ब्रह्मा बाप से दिल में मिलन बनाते आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा के चरित्र जो है हम यहाँ सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं चरित्र आदि ताकि उस प्रकार के चरित्रों के बातों को सुन करके आपको भी ऐसा बाबा को फॉलो करने की प्रेरणा मिले। और इसलिए बाबा ने एक सावधानी भी दिया है आगे करके, बाबा ने कहा है तो ये फॉलो करने का कार्य कभी भी छोड़ना नहीं। ब्रह्मा बाप को यहाँ तो अव्यक्त बाप दादा दोनों को बाप दादा को फॉलो करने का कारोबार कभी भी छोड़ना नहीं। क्यों ब्रह्मा बाप को क्यों याद करने का, वो बहुत सुंदर बाबा ने कहा भाई ब्रह्मा बाप ने आप जैसे ही हम जैसे ही वो भी साकार में थे आप जैसे ही साकार रूप में पाठ बचाया और पास हो गए। बहुत सुंदर ये महावाक्य है कि ब्रह्मा बाप भी हमारे समान थे, हमारे समान साकार रूप में पाठ बजा करके पाठ इतना सुंदर बजाया कि इसके कारण वो पास हो गए। और इसलिए बाबा ने 18 जनवरी का एक नई डेफिनेशन दिया कि आज का यह यादगार 18 जनवरी का जो यादगार दिन है वो ब्रह्मा बाप के पास होने का दिन है। जैसे होता है ना कोई दुनिया में स्कूल में कॉलेज में पास हो जाता है तो कितना हर्ष मनाते हैं, उसका पास होने का दिन मनाते हैं, कॉन्वोकेशन होता है, क्या क्या दुनिया में होता है, इस प्रकार से ब्रह्मा बाप का पास होने का दिन माना ही 18 जनवरी। बहुत सुंदर बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया ब्रह्मा बाबा के लिए कि पहला ब्रह्मा बाबा का पास होने का ही 18 जनवरी की महानता। देखो कितनी सुंदर महानता बाबा ने कल की मुरली में बताया। बाबा की मुरली बहुत फास्ट थी पर बहुत ज्ञान के सिद्धांत बताए हुए हैं। फिर बाबा ने सबको इमर्ज किया ब्रह्मा बाबा ने सुबह और साकार रूप में इमर्ज करके बहुत याद प्यार दिया। आप सबके मन में बाबा ने कहा कि आप सबके मन में भी ब्रह्मा बाप समान साकार में पाठ बजाने की स्मृति रहती है, भले देखा नहीं परंतु सुना तो है ना, और इसलिए सबको मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में क्या क्या किया। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना हो तो ब्रह्मा बाबा के चरित्र को अच्छी रीति से जानो समझो और पढ़ो। उसके बारे में ज्ञानामृत आदि में बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से बहन भाइयों ने अपने अनुभव लिखे हुए हैं। हमने भी 18 जनवरी बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद बहुत अपने सबको कहा गया आर्टिकल लिखो, तो हमने भी आर्टिकल लिखा ब्रह्मा बाबा की स्मृति में। उसका नाम रखा था दो बूंद स्मृति के, दो बूंद स्मृति के मोती, इस प्रकार से आर्टिकल लिखा था। ऐसे बहुत से आर्टिकल छपे हुए हैं। पुराना साहित्य पढ़ने के लिए हमारे लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाकर के पुराने ज्ञानामृत के आर्टिकल पढ़ो तो बाबा के जीवन की बातें बहुत ही सीखने को समझने को और धारण करने का, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर करने के लिए आप हम सबको मिल सकती है, परंतु तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किए बिना हम बाबा के चरित्र की बातें सुनने में नहीं आएंगी, सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी तो फॉलो फादर करके उसको धारण नहीं कर सकेंगे। इसलिए थोड़ा तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए, परंतु तो क्या करें, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, पर जो लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा है वो उस प्रकार से फॉलो करके हम बाबा के चरित्र को अच्छे में अच्छी रीति से समझ ले। हमारे टीचर्स बहनों को खास इसका वरदान मिल सकता है क्योंकि उनके पास थोड़ी ज्यादा समय की सुविधा है। ब्रह्मा बाबा ने साकार में क्या क्या किया वहां वो सीखने का है। ऐसे कैसे प्रीति की रीति निभाई, प्रीति की परमात्मा के साथ प्रीति की रीति भी निभाई और साथ सेवा की भी प्रीति की रीति निभाई। परमात्मा के साथ याद किया, पुरुषार्थ किया, सब कुछ किया। मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाऊं। हम लोग ब्रह्मा बाबा ने बॉम्बे में पहली वाली प्रदर्शनी हो चुकी थी, 3-4 बार हो चुकी, फिर दिल्ली वालों ने वो प्रदर्शनी करने के लिए दिल्ली में प्रोग्राम बनाया, तो इसके कारण हमने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आपको एक बार प्रदर्शनी देखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो बाबा ने हमको कहा कि बाबा तो जा रहा है, आपका क्या प्रोग्राम है? तो मैंने बाबा को टेलीग्राम किया कि मैं और उषा आपके साथ ट्रेन में आपके साथ चलेंगे। तो इसलिए यहाँ आए हम लोग अहमदाबाद से। उस जमाने में तो मीटर गेज थी, तो मीटर गेज में हम अहमदाबाद से यहाँ आए। हम पहले जनता में आ गए थे और बाबा का मेल था, 2 घंटे का रास्ता डिफरेंस था। इतने में हम लोगों ने स्टेशन के ऊपर ही वेटिंग रूम में स्नान पानी कर लिया, नाश्ता कर लिया और ब्रह्मा बाबा आए, उनके साथ ट्रेन में बैठे और जाने लगे थे। ट्रेन में चार लोग थे, मैं, उषा जी और लच्छू दादी और ब्रह्मा बाबा, और बाकी डब्बे में और लोग थे, विश्व किशोर दादा, संतरी दादी, ये सब थे। इसलिए 8-10 लोग हम जा रहे थे। तो रात को जयपुर आ गया, जयपुर वाले सब मिल के गए। उसके बाद हम सो गए। उसके बाद 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई, तो मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा जो है वो बैठे हुए हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। तो मैं ऊपर की सीट में था, सामने की सीट में। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपको नींद नहीं आती है क्या? क्योंकि ट्रेन में कईयों को नींद नहीं आती है। तो हमने बाबा को कहा कि बाबा आपको नींद नहीं आती है क्या? तो बाबा, क्या नींद तो मुझे आती है पर तो मैं बाबा को याद करता हूँ। तो मैंने कहा, बाबा 2:30 बजे क्यों करते हो? बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा, मैं क्या करूं, मैं आप बच्चों के जैसा भाग्यशाली नहीं हूं। तो हमने बाबा को फौरन कहा, बाबा हम ज्यादा भाग्यशाली और आप कम भाग्यशाली, ऐसा कैसे? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बाबा ने कहा, नहीं, इस बात में आप भाग्यशाली है कि 24 घंटा आप अपना शरीर के द्वारा कुछ भी कर सकते हो और मैं क्या करूं, दिल में तो वो बैठा रहता है। आपने समझा, दिल में वो बैठा रहता है माना अब एक तरफ शिव बाबा बैठा रहता है, तो मैं तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूं, मैं तो साक्षी बन करके साथ में बैठा रहता हूं। अभी रात को उसको तो नींद की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अथक है, इसलिए वो रात को मेरे तन में नहीं रहता है, तो रात में मेरा शरीर मुझे मिलता है, तो मैं रात को बाप को याद करता हूं। तो इस प्रकार से रात को 2:30 बजे उठ करके हम ब्रह्मा बाबा, श्री बाबा को याद करते थे। तो मतलब खुद को भी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा बन गए तो इसलिए लॉटरी मिल गई और इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, रात को भी जाग करके पुरुषार्थ करना पड़ता था। मैं आपको एक दूसरा अनुभव सुनाऊं बाबा का। एक बार मैं यहाँ आया हुआ था और जगदीश भाई ने एक कोई आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल बाबा को भेजा था कि बाबा उसको देखो, आपको आप अप्रूव करो, मंजूर करो, तो फिर उसको किताब के रूप में छपवाएंगे। तो रात्रि क्लास में ही बाबा ने मुझे बुलाया कि बच्चे ये जो जगदीश बच्चे ने आर्टिकल लिखा हुआ है उसको पढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, दे दो। तो मैंने ले लिया और दूसरे दिन सुबह चालू मुरली के बीच में ही बाबा ने हमको सवाल पूछा कि बच्चे तुमको आर्टिकल दिया था जगदीश बच्चे का, वो पढ़ा? आप सब जानते हैं हम सब एक बात में नंबर वन है, मालूम है ना आप सब, हम सब एक बात में नंबर वन है, बहाने बनाने में। हम सब बहाने बनाने में एक्सपर्ट है। तो मैंने भी बहाना बनाया, मैं भी आपके साथी हूँ, आप समान ही हूँ। तो इसलिए मैंने बाबा को कहा, बाबा कल रात को तो आपने आर्टिकल दिया, उसके बाद तो हम जाकर के सो गए, सुबह उठ के स्नान पानी करके आपके पास मुरली सुनने के लिए आए, तो हमारे पास टाइम कहाँ था जो हम आर्टिकल को पढ़े। इस प्रकार से हमने बहाना बनाया। बाबा जो है ना, बाबा बहुत एक्सपर्ट है, जिसको हमारे गुजराती में कहते हैं चतुर सुजान, मतलब बहुत ही हमारी वकालत को बाबा भी वकील बन करके काटते थे। तो बाबा ने कहा, किसने कहा तुम्हारे पास टाइम नहीं था? मैंने कहा, बस बाबा रात को तो आपने दिया रात्रि क्लास में, रात को सो गए, सुबह उठ करके आपके क्लास में आए, कहाँ हमारे पास टाइम था? बाबा ने कहा, बाप के तुम्हारी बातों में नहीं फंसेगा, बाप तुम्हारे पास सारी रात तो थी, रात को जा करके क्यों नहीं पढ़ा? मेरे तो एकदम शांत हो गया। मैंने कहा ये बात तो बराबर है, सारी रात हमारे पास थी, हम रात को जा करके क्यों नहीं पढ़ा। मैंने कहा ठीक है बाबा, अभी मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, देखूंगा और आपको बताऊंगा। बाबा ने कहा नहीं, बाबा का कार्य तुरंत होना चाहिए, बाबा का कार्य तुरंत होना चाहिए, बाबा का कार्य में इस प्रकार से समय बीच में बिता करके व्यतीत करके टाइम बाबा का कार्य को दूरी पर नहीं रखना चाहिए, कार्य फौरन तुरंत काम करना चाहिए। उस दिन से मैंने नक्की किया कि बाबा का कार्य जो भी है उसको 24 घंटे भी देरी से नहीं करना चाहिए, रोज का कार्य रोज करना चाहिए, रोज भी पोस्ट आती है, रोज का जवाब देने का, रोज के ईमेल जो आते हैं उसको जवाब देने का, इस प्रकार से सीख लिया। क्योंकि मैंने देखा कि डायरेक्ट मुझे ब्रह्मा बाबा ने सिखाया कि बाबा का कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत करना चाहिए। तो जो जिसने डायरेक्ट सुना उसको तो करना पड़ेगा। आप सबने आज सुन लिया तो इसलिए आपने भी अभी सुन लिया तो आपको भी अभी ये करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा। प्लीज कृपया इन सब बातों में, पुरुषार्थ के बातों में बहानेबाजी मत करना। मैं समझता हूँ कल के 18 जनवरी की मुरली का एक फायदा ये भी ले सकते हैं कि आज से हम बहाने बना करके अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करके तीव्रता के आधार पर श्रेष्ठ पद पाएंगे। आप सबको मंजूर है कि हम बहानेबाजी छोड़ देंगे आज से? देखना, बहानेबाजी छोड़ने का लक्ष्य रखना तो हो जाएगा। मैंने तो उस दिन से लक्ष्य रखा जब बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा के ज्ञान के अंदर बहाना नहीं चल सकता है, सारी रात तुम्हारे पास थी, और कैसा कह सकता है कि बाबा मेरे पास टाइम नहीं था। इस प्रकार से बाबा बहुत कई बार ब्लंटली बोल देते हैं हम बच्चों को सावधान करने के लिए। बाबा को बाबा ने हाथ भी उठवाया, जो भी है वो तो जो, और बाबा ने फिर दूसरी बात कही कि बाबा ने हर जोन के बच्चों को इमर्ज किया, सभी जो भी बात सबको ब्रह्मा बाबा ने ऊपर इमर्ज किया। जोन में तो आप सब होंगे, इस प्रकार से सभी बाबा के बच्चों को दिया और एक एक को बाबा ने याद प्यार दिया। फिर क्या है, बाबा ने कहा बात स्वास्थ्य के लिए दे बच्चे वाह, और अभी भी ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त रूप में आप बच्चों को मिलते ही रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, तीन रूपों का कारोबार जो है समझना पड़ेगा। एक अव्यक्त बाप दादा के रूप में, दोनों का कंबाइंड रूप में, एक अव्यक्त परमात्मा का रूप का, एक अव्यक्त साकार ब्रह्मा का अव्यक्त रूप का पार्ट, तीनों को समझना पड़ेगा। तीनों को अगर जो समझ लेने उसका, मैं ऐसा हंसी में कहता हूँ, उसका बेड़ा पार हो सकता है कि ये बाप का पार्ट है, ब्रह्मा बाप का पार्ट है, ये शिव बाबा का पार्ट है, और ये बाप दादा का दोनों का मिला जुला पार्ट है। कल का मुरली का हमने देखा 99% जो है शिव बाबा का अकेले का ही पार्ट था, ब्रह्मा बाबा को उन्होंने कल इमर्ज नहीं किया, साथ में नहीं लाया। कल का पार्ट बाप दादा के रूप में नहीं था, परंतु बाप के रूप में, अव्यक्त बाप के रूप में ज्यादा पार्ट था। फिर बाबा ने बताया कि आप बच्चों ने देखा नहीं है, परंतु फिर भी आप बच्चे महान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि आप सब न देखे हुए भी मान गए कि ब्रह्मा बाबा हमारा बाप था। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर आगे की बात बताई कि आज की दुनिया के अंदर फॉलो फादर करना मुश्किल लगता है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने कितना एक्यूरेट अपना पार्ट बजाया। समस्या तो सबके सामने आती है, समस्या के सामने आती है। एक भाई ने हमको 2-4 दिन पहले मुझे मिला कि ब्रह्मा बाबा के सामने समस्या क्यों आनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा वो तो बाबा का रथ था, उनके सामने समस्या क्यों आई? मैंने कहा वो तो समस्या इसलिए आई कि उनको खुद को तो अपना पार्ट बजाना था, और साथ में हमारे लिए यादगार के रूप में भी कोई भी समस्या सामने आती है तो उसको कैसे उसका सामना करना चाहिए। हर प्रकार की समस्या आई, गरीबी का पेपर का आया, अनेक प्रकार के, समझो अब हैदराबाद से कराची आना पड़ा, वो भी समस्या थी, और कराची से माउंट आबू आना पड़ा, वो भी समस्या थी, और फिर कराची माउंट आबू में आकर के सभी बच्चों को, सभी बहनों को सेवा पर सब जगह पर भेजने का, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे बाबा ने सबको निमित्त बना करके तैयार किया। आप सबको मालूम होगा, जानकी दादी ने बहुत बार कहा हुआ है कि जानकी दादी को बाबा ने कहा, बच्ची तुमको ईश्वरीय सेवा पर जाना होगा, तो जानकी दादी ने मना किया कि नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने बहुत, दादी जानकी बहुत बार कहती है कि बाबा ने जो उनको बताया कि बच्ची मैं दूसरी जानकी कहाँ से लाऊंगी, इसलिए तुमको तो सेवा पर जाना ही पड़ेगा। मैं हंसी हंसी में देख रहा था कि पहली बार बाबा ने जो मना किया, अब बाबा ने ऑफर किया और दादी जानकी ने मना किया कि बाबा मैं नहीं जाऊंगा, और कल देखो क्या हो गया, दादी जानकी ने बताया कि मैं लंदन जा रही हूँ। देखो अपने आप ही यहाँ का कारोबार छोड़ करके लंदन के कारोबार के लिए, वो भी ईश्वरीय सेवा है, उसी के हिसाब से आज करीब एक दो डेढ़ दो बजे निकलेंगी, अहमदाबाद जाएंगी, अहमदाबाद से जेट एयरलाइंस में बॉम्बे जाएंगी, और बॉम्बे से रात को 2 बजे का फ्लाइट से कल सुबह लंदन पहुंच जाएंगी, और वहां से 29 तारीख को निकल करके यहाँ 29 रात को या 30 सुबह आ जाएंगे। तो देखो 98 की आयु में अभी इतना सुंदर सेवा के लिए भाग दौड़ करना, सेवा के लिए लंदन जाना, लंदन से आना, कितना कारोबार होता है, कितना कष्ट होता है। अंग्रेजी में, हिंदी में सफर, मुसाफरी को सफर कहते हैं, आप सब ने जानते होंगे, मुसाफरी को सफर कहते हैं, और अंग्रेजी में सफर शब्द का होता है सहन करना। मैं हमेशा ही कहता हूँ सफर में सफर करना होता है, सफर में सफर करना होता है, क्योंकि सफर करने में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, क्या क्या होता है, खाना पीना इस प्रकार से हवा में उड़ते हैं तो उड़ने में कईयों की एयर सिकनेस हो जाती है, कईयों को ट्रेन में तकलीफ होती है, कईयों का सामान चोरी हो जाता है, क्या क्या होता है। अभी अभी बॉम्बे से पार्टी आ रही थी तो सामान यहाँ ट्रेन में अहमदाबाद अपने आबू में उतरा और एक सीट के नीचे का सामान था वो रह गया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। जब सामान बस में चढ़ा रहे थे कह रहे वो सामान कहाँ गया, तो मालूम पड़ा कि वो तो जो दिल्ली मेल था अभी जो जिसको हरिद्वार मेल कहते हैं उसके अंदर आगे चला गया। इस प्रकार से कई बातें होती है, कई होगी क्या 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 नुकसान होता है, मतलब सफर के अंदर सफर करना होता ही है उसके बीच में। इसलिए ये मत समझो कि सफर करना माना कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है, उसके अपना भाग्य बनाने के लिए और बात है, परंतु सफर में कई बातों की सहन करना ही पड़ता है। और फिर बाबा ने क्या क्या, आप सबको भी यह दृढ़ संकल्प लेना है, हम सबको कल बाबा ने दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा हुआ है कि अंत तक पाठ बजाते बजाते पाठ में पास होना ही है। हम सबका जो पाठ है उस पाठ के अंदर अंत तक पाठ बजाते बजाते पाठ में पास होना ही है, और बाबा ने आथक दिया कि हुआ ही पड़ा है, आप सब पास हुए ही पड़े हैं। फिर बाबा ने सवाल पूछा, हुआ ही पड़ा है या होना है, क्या होना चाहिए, तो हम सब ने जवाब दिया कि हुआ ही पड़ा है। तो बाबा ने फिर से याद कराया, हुआ ही पड़ा है वो निश्चय तो है ना, और बाबा ने इस संगम युग को बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया। ये संगम युग क्या है, विजय पाने की मौसम है, जैसे अभी ठंडी के मौसम चलती है ना, गर्मी के मौसम चलती है ना, इस प्रकार से बाबा ने वर्तमान समय की बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया कि अभी ये विजय पाने के मौसम है। किसके ऊपर विजय पाने के लिए, अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय पाने के लिए, अपने किए हुए विकर्म जो भी 63 जन्मों में किए हुए होंगे उनके ऊपर विजय पाने की, मतलब इस प्रकार से विजय पाने की मौसम है। और ये विजय पाने के मौसम बाबा ने उसका संगम के साथ जोड़ दिया, और संगम युग की ये विशेषता है, संगम युग की ये विशेषता है विजय पाने के लिए, तो इसलिए बाबा ने कहा समय की यह विशेषता को यूज करते चलो, आगे बढ़ते चलो। समय की जो विशेषता है, कभी कभी समय की सावधानी बाबा दे देते हैं, आज बाबा ने समय की विशेषता के बारे में एक बार, समय की विशेषता क्या है कि विजय पाने की ये मौसम है, ये समय है, ये जैसे होता है ना आम की मौसम होती है, ऐसे हर चीज की मौसम अपने अपने समय पर आती है। तो इस प्रकार से ये संगम युग सारे कल्प के अंदर विजय पाने की मौसम है। तो इसलिए समय की, बाबा ने कहा समय की विशेषता को यूज करते चलो। ब्रह्मा बाप को सालों साल साकार में पालना करने का अटेंशन रहा, हर समय अटेंशन रहा। इस प्रकार से आप सबको भी सीखना चाहिए कि ब्रह्मा बाप ने कैसे किया, क्या किया बाबा ने। ब्रह्मा बाबा की एक और विशेषता बाबा ने बताई, आप सबने नोट किया होगा, मैंने खास नोट किया। बाबा की एक विशेषता है कि कितना प्यार ब्रह्मा बाप ने निराकार बाप से लिया और हम बच्चों को दिया। कितनी सुंदर विशेषता बताई, ब्रह्मा बाप ने निराकार बाप से कितना प्यार लिया और उसको हमें कितना दिया। ये लेना और देना, परमात्मा से प्यार लेना और बच्चों को देना, वो कैसे हो सकता है। उसका सोल एग्जाम्पल है चंद्रमा। चंद्रमा जो क्या होता है, चंद्रमा अभी दो दिन पहले गई ना, पौष महीने की पूर्णिमा गई, तो वो पूर्णिमा में क्या होता है, सूर्य जो है उसका किरणें जो है उसके प्रकाश की रोशनी जो है चंद्रमा के ऊपर होती है और चंद्रमा फिर हमको रोशनी देता है। इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, ब्रह्मा शिव बाबा से प्यार लिया और वो प्यार परावर्तित कर करके ट्रांसफर करते हुए हम बच्चों को दिया। इस प्रकार से हमें भी आना चाहिए कि हम भी परमात्मा से प्यार ले, ब्रह्मा बाबा से भी प्यार ले और औरों को भी प्यार दे। प्यार लेना और देना ये हमारी संगम युग की विशेषता होनी ही चाहिए, ये सीखना पड़ेगा। हमको गुस्सा करने का आता है, रोना आता है, बाकी सब बातें आती है, परंतु प्यार लेना और प्यार देना ये बहुत कठिन बात है, सामामूली बात नहीं है, परंतु वो सीखनी पड़ेंगे और जो सीखेगा वो पाएगा। फिर बाबा ने एक जो जिन्होंने पालना लिया हुआ था ना उनको एक सर्टिफिकेट दिया कि जिन्होंने पालना ब्रह्मा बाप से ली थी उन्हों को ब्रह्मा बाप की याद ज्यादा आती है। ये हकीकत है, हम बच्चों को जितना ब्रह्मा बाप को याद आते हैं क्योंकि हमने पालना ली हुई है, तो इसलिए कहीं भी कुछ भी बात हो जाती है फौरन बाप से जो पालना ली हुई थी साकार में वो याद आ जाती है। क्योंकि प्रैक्टिकल की पालना ली ही, प्रैक्टिकल में उन्होंने पालना ली है और इसलिए विशेष याद सिर पर घुमा करके ऐसे दी करके बाबा ने कल उनको जिन्होंने पालना विशेष ली थी उसके ऊपर बाबा ने कल एक्चुअली एक्टिंग करके भी दिखाया। इस प्रकार से पूरा करके आगे बाबा ने मुरली समाप्त किया। 9:02 पर हम मुरली समाप्त किया। बाबा ने कहा अब तो समय हुआ है, आज कौन मिलना है। और उसके बाद इंदौर जोन की बात बताई बाबा ने, 7,000 बहन भाई आए हुए हैं। इस प्रकार से उसके अंदर एक सुंदर बात कही, इतनी बातें बाबा ने प्यार से बात कहने के बाद एक बात टोटके के रूप में कह दिया, सबको इस वार्निंग के रूप में बाबा ने कहा हुआ है। बाबा ने क्या कहा, इंदौर वाले सब पुरुषार्थ में आगे से आगे है ना, आगे से आगे है ना, कोई पीछे तो नहीं रहता, कोई पीछे तो नहीं रहता। और जो पीछे रहता है उसको बाबा ने वार्निंग दे दिया। बाबा की वार्निंग बहुत गड़बड़ इनकॉग्निटो जिसको कहते हैं, इस प्रकार की वार्निंग है, पीछे रहने वालों को प्राप्ति भी तो पीछे होगी, ये वार्निंग है पीछे रहने वालों का। हम कभी कई बार क्या होता है, बाबा ने तो कहा है बेफिक्र बादशाह बनो, इसके बदले में हम बन जाते हैं दूसरे प्रकार के बादशाह। आपको सबको मालूम है वो हम सब ऐसे बनते हैं, वो है बेपरवाह बादशाह। ठीक है, आप सब क्या हो, हम सब क्या है, बेफिक्र ज्यादा रहते हैं या बेपरवाह ज्यादा रहते हैं। तो बेपरवाह ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है पीछे रहने वालों को प्राप्ति भी पीछे होगी। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए सदा नंबर वन पुरुषार्थ में रहो, सदा पुरुषार्थ में नंबर वन रहो। पीछे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राप्ति भी पीछे होगी। प्राप्ति का पीछे का अर्थ समझते हो, सतयुग में नहीं आएंगे तो परंतु त्रेता युग में आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, पीछे का अर्थ अनेक प्रकार की बातों का हो सकता है। तो इसलिए पीछे रहने वालों को पीछे की पीछे रहना होगा। आप सबको यहाँ कोई ऐसे बैठे हैं कि ठीक है बाबा सतयुग में नहीं आएंगे तो त्रेता युग में आएंगे तो चलेगा, जो ऐसा समझते हैं सतयुग में नहीं मिला प्राट और त्रेता युग में मिला तो भी चलेगा, ऐसा किसी की इच्छा हो तो हाथ खड़ा करें। सबकी इच्छा तो सतयुग से आने की है ना, पीछे में आने की तो नहीं है। पीछे तो और भी पीछे हो जाएगा, द्वापर युग से आने वाले भी बन सकते हैं। कितना पीछे होगा भगवान जाने, पर तो लक्ष्य हमारा तो होना चाहिए सतयुग की आदि से साथ में आने का, पार्ट बजाने का, वो इस लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए बाबा ने कल हम सबको ये सावधानी दिया कि पीछे रहने वालों को प्राप्ति भी तो पीछे होगी। इसलिए सदा नंबर वन, हमेशा लक्ष्य रखो, हर कार्य में नंबर वन जाना ही है। बहुत सुंदर बाबा ने इतनी दो दो लाइन के अंदर हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य दे दिया कि हमें हर कार्य में नंबर वन जाना ही है। ठीक है लक्ष्य, नंबर दो तो किसी को नहीं लेना है ना, कि नंबर वन ही लेना है। जिसको नंबर दो लेना है वो हाथ खड़ा करे। देखो कोई हाथ नहीं खड़ा करता है, सबको नंबर वन। तो बाबा ने भी कल कहा हर कार्य में नंबर वन जाना ही है। ठीक है, हाँ तो हम सब बाबा को वायदा करें कि बाबा हम सब हर कार्य में नंबर वन जरूर जाएंगे। ठीक है, वजन वायदा कर सकते हैं ना, जो ऐसा वायदा कर सकते वो हाथ तो खड़ा करें कि हम हर कार्य में बाबा नंबर वन आज से जाएंगे। थैंक यू। फिर बाबा ने डबल विदेश वो 9:02 से 9:06 तक, 4 मिनट 4-5 मिनट तक बाबा ने इंदौर वालों से बात किया। फिर डबल विदेशियों से बात किया 9:06 से 9:09, 3 मिनट बात किया, जिसके अंदर बाबा ने विश्व कल्याणी और भारत कल्याणी की बात की, वो तो आप सब जानते हैं। उसके बाद बाबा ने कलकत्ते वालों से बात किया जिन्होंने फूलों का अच्छा श्रृंगार किया, और सभी को यही कहा बाबा ने आप सब जो भी आए हैं, नए भी आए थे सबको जो कहा, क्योंकि 600 लोग कलकत्ते से भी आए थे वो साइड में बैठे हुए थे, इनको भी कहा कि आप अच्छे हैं अपने घर में आए हैं बहुत। और फिर एक बहुत सनातन सत्य, नहीं तो क्या हो गया है, मैं हमेशा ही कहता हूँ यज्ञ को जोन्स के रूप में हॉरिजॉन्टल डिवाइड मत कीजिए, और इसी प्रकार से व्यवसाय के रूप में वर्टिकल रूप में डिवाइड मत कीजिए। वही बात जो मेरी जो दृढ़ संकल्प है कि जोन्स जो है वो जो भी है सेवा केंद्र जो भी है ये सब खाली सेवा के लिए है, क्योंकि एक साथ में तो सब बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ में सब आ नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कल भी कहा कि सेवा के लिए सब अलग अलग हो गए हैं, कोई इंदौर जोन, कोई महाराष्ट्र जोन, कोई गुजरात जोन, वो सेवा के लिए हो गए हैं। प्लीज इस प्रकार से सेवा के आधार पर कारण जो बने हुए जोन से या जो भी अलग अलगता हो गई है वो अलग अलगता वाद के रूप में नहीं बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान मत बनाइए। ये तो जोन जो है जोन या सेवा केंद्र ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बताऊं, हमारे हैदराबाद के एक जज थे, ये जस्टिस ईश्वरैया नहीं पर दूसरे एक जज थे, वो चित्तूर के वहां के कोई पालक जज भी थे, वो चित्तूर के चित्तूर जो था ना वो बेंगलोर कनेक्शन में था, चित्तूर बेंगलोर कनेक्शन में। मैं आप नाम सही आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चित्तूर का वो पालक जज था, तो इसलिए जब चित्तूर में गए तो वहां के सेंटर पर गए, मैं नाम सही कह रहा हूँ, ताकि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चित्तूर में गए तो उनको क्लास में भी बैठने नहीं दिया, क्या क्यों, का ये तो हैदराबादी है, हम सब कर्नाटकी है। इस प्रकार से बेचारे जो हाईकोर्ट जज था, जो चित्तूर का पालक जज था, उसको भी ऐसा कह दिया कि ये तो हैदराबादी है, हम तो कर्नाटकी है। इस प्रकार से हैदराबादी आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक के बीच का जो भेद जो है, इस प्रकार से जो हुआ, तो जज ने हमको फोन किया, रमेश भाई ये कहाँ का न्याय है, मैं सेवा के लिए मेरे को हाईकोर्ट का पोस्ट मिली हुई है हैदराबाद में, इसलिए मैं हूँ हैदराबाद का, मैं हैदराबादी नहीं हूँ, और मेरे को हैदराबादी समझ करके उन्होंने कहे तो हम तो कर्नाटकी है, ये हैदराबादी है, क्यों ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया गया। मैंने कहा जज साहब सॉरी, ये व्यवहार के बारे में जो हुआ उसके लिए मैं आपको सॉरी के सिवाय कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए, ये भेद जो है ये भेद नहीं होना चाहिए। कल बाबा ने उसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेवा के कारण सब अलग अलग हो गए हैं, बाकी हम सब एक है। जानकी दादी ने अभी पिछले 15 दिन पहले एक क्लास कराया था कि हम सब एक ही है, एक ही दैवी परिवार के हैं, और जैसे सतयुग में परमात्मा नहीं मिलने वाला है, उसी प्रकार से ये दैवी परिवार भी आपको नहीं मिलेगा। होंगे, हम सब मिलेंगे, परंतु दैवी परिवार के संबंध से नहीं मिलेंगे। वहां तो हर एक अपना अपना कर्तव्य करेगा, अपना अपना कारोबार करेगा, और इसलिए दैवी परिवार की जो महानता जो है, जो खुशबू जो है, और संगम युग में ही हो सकती है। तो इस दैवी परिवार की महानता, इसकी खुशबू ले लो, उसके अंदर क्यों भेदभाव निर्माण हम करें, ये सोचिए। ये सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर बात सबसे बातें हुई, मेरे साथ की बात भी मैं आपको बता दूं। मैंने बाबा को गुलदस्ता दिया, मैंने बाबा को कहा सबने याद दिया है और हमने आपको एक संदेश भी भेजा है। तो बाबा ने ऐसा हाथ को मुक करके हिला करके सीधा ही हमको सवाल पूछा, तबीयत ठीक है, ये मुरली में भी छप गया है। हमको जो बाबा ने सवाल पूछा, तो आप सब कहेंगे कि ये रमेश भाई की तबीयत के बारे में क्यों बाबा पूछते हैं, इसका उसके पीछे इतिहास है। मैं आपको 2 मिनट में वो इतिहास भी सुना दूं। इसलिए मैंने कहा ना कि सारी मुरली के अंदर हमारे साथ का कई प्रसंगों का इतिहास है। तो क्या हुआ कि हमारे लौकिक जो युगल देव उषा जो थी, उसको कैंसर हुआ था, बहुत ही पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था। तो बाबा ने उसको अपने पास ऊपर सूक्ष्म वतन में बुलाया और बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हें शरीर छोड़ना है। तो उषा ने मना किया कि बाबा कितना भी दुख हो, कितनी भी पीड़ा हो, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे रमेश की जो है हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके लिए क्योंकि मुझे ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ दिया है कि मुझे रमेश का ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी। परंतु उषा ने कहा कि आप अगर वायदा करते हैं कि आप मेरे बदले में रमेश की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो मैं शरीर छोड़ने लिए तैयार हूं, आप वायदा करो। और शिव बाबा ने वायदा किया कि बच्ची मैं रमेश का ध्यान रखूंगा और तुम अभी शरीर छोड़ सकती हो। तो उसने कहा ठीक है बाबा, मैं शरीर छोड़ने लिए तैयार हूं। तो बाबा ने कहा, वो कोमा में थे, उसमें बाबा ने नीचे फिर से उसको भेजा और कहा जाओ सबसे छुट्टी लेकर के आओ। और नीचे छुट्टी लेने के लिए आई, 4 बार उसने कहा मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसा कह करके बाबा के पास गई। बाबा ने उसके आत्मा को ऊपर बुला लिया और उसने शरीर छोड़ दिया। परंतु जो बाबा ने जो वायदा किया था कि मैं रमेश का हेल्थ का ध्यान रखूंगा, तो शुरू के दिनों में तो 8-10 बार तो जितनी बार मैं स्टेज पर आता था, वो अभी भी जितनी बार मैं स्टेज पर आता हूँ, यहाँ तो बाबा ऐसे हाथ करके पूछेंगे। कल तो बाबा ने फिर इतने कारोबार से इतना फास्ट तीव्र स्पीड में बाबा कारोबार करते थे, उसके अंदर भी बाबा ने अपना वायदा निभाया और बाबा ने हमको पूछा कि तबीयत ठीक है ना। तो देखिए ये बाबा की कितनी महानता, इतने महान बाबा के सामने हम तो कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं होते हुए भी हमारे साथ जो उषा के लिए साथ, मेरे लिए उषा के साथ जो वायदा किया, वो बाबा अभी भी उषा का शरीर छोड़े हुए 3 साल, 3.5 साल हो जाएंगे अभी, तो 3.5 साल से बाबा अपना वायदा निभा रहे हैं। ये कितनी बाबा की महानता है, और उस महानता के आधार पर क्या होता है, हम नतमस्तक हो जाते हैं कि बाबा आप कितने महान हो, कितना महान हो कि आपने जो वायदा किया वो अभी तक निभाते हो। हम भी अगर बाबा से ये बात सीख ले कि जो वायदा किया हुआ है या करते हैं बाबा के साथ, कल भी कई ने वायदा किया हाथ उठाया हुआ है, वो जैसे शिव बाबा अपना वायदा निभाते हैं, ऐसा हम सब भी जो वायदा किया हुआ है, वो ये सिनेमा के गीत भी है ना, जो वायदा किया हुआ है वो निभाना ही पड़ेगा, वो गीत गाते रहे, और जो भी वायदा किया हुआ है, वादा किया हुआ है परमात्मा के साथ, जैसे परमात्मा हम बच्चों के साथ किए हुए वायदे को निभाते हैं, इस प्रकार से हे बाबा हम भी आपके साथ, हम भी आपके साथ किए हुए वायदा को निभाते ही रहेंगे। अगर ये प्राण, ये निश्चय, ये प्रतिज्ञा हम सब करें तो कल का 18 जनवरी मनाने का सफल हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ आप सब बाबा के साथ अपने दिल से वायदा करिए कि बाबा हम आपसे जो भी वायदा कर रहे हैं वो वायदाओं को निभाते रहेंगे। ठीक है, सबको मंजूर है? जिनको मंजूर है वो हाथ खड़ा करें। तो ठीक है, देखो आप बाबा के साथ वायदा कर रहे हो, मेरे साथ नहीं, बाबा के साथ कर रहे हो, संभालना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वायदा करते हुए, उस वायदा को याद करते हुए अभी एक मिनट हम बाबा को याद करके आज का ये कार्यक्रम जो है हम समाप्त करेंगे। आप सबने हमारे हमको साथ दिया, हमारी बात को शांति से सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम शांति। एक मिनट जरा बैठे रहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये जो उषा का और हमारा और वायदा का बात बताई, इनसे एक बात सिद्ध होती है, क्योंकि हमारे कई बहन भाइयों को सूक्ष्म वतन क्या है और अव्यक्त पाठ क्या है उसके बारे में अनेकों के मन में शंका है, शंका है। मैंने इसलिए आपको बताया कि अव्यक्त रूप में जो बाबा ने पाठ बजाते हैं, सूक्ष्म वतन में जो पाठ बजाते हैं, जो हमारी बहने ध्यान में जाती है बाबा के पास संदेश लेकर के जाती है, वो सब रियल है। उसके बारे में उसके पीछे का विज्ञान जो है, साइंटिफिक जो प्रूफ जो है, साइंटिफिक विचार जो है, उसको समझ लेंगे ना तो हमारे अव्यक्त पाठ की, हमारे सूक्ष्म वतन के पाठ की और बहनों के ध्यान में जाने का पाठ को और उसकी सच्चता और महानता और उपयोगीपना आप समझ सकेंगे। तो इसलिए कृपया ये सूक्ष्म वतन का पाठ, संदेशियों का पाठ आदि को समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत कुछ बल आपको मिल सकता है। ओम शांति।